कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरी टू द सेवेंटी होटीस, ऑल ग्लोरी टू द सेवेंटी होटीस, ऑल ग्लोरी टू द सेवेंटी होटीस, जय श्री जगन्नाथ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रसारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, गणतंत्र दिवस है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भारतीय संविधान अपने देश का नियम सब लागू किया गया 26 जनवरी को, तो यह हमारे देश के लिए बहुत शुभ दिन है। अंग्रेजों के अत्याचार से पूरे मुक्त हुआ भारत और भारतीय संविधान बना करके आज के दिन लागू किया गया। बहुत पवित्र दिन है और हमें यह दिवस एकता का पाठ पढ़ाता है, खुशी का दिन है। तो हम लोग भी चैतन्य चरितामृत सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो जो लीला किए उसी में से कुछ लीलाएं कही जाएंगी। यहाँ माँ के आदेश से आए, जब अद्वैताचार्य जी के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने लाया, वहाँ 10 दिन रहे शांतिपुर में, और वहाँ से फिर वे चले जगन्नाथपुरी। माँ सची ने विनय किया अपने पुत्र से, चैतन्य महाप्रभु से, बेटा तुम वृंदावन जाओगे तो वो बहुत दूर है, वहाँ से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिलेगा, तो तुम ऐसा करो संन्यास तो ले ही लिया हो, मैं तुम्हें बाधित नहीं करूँगी कि तुम संन्यास छोड़ करके फिर गृहस्थ हो जाओ और विष्णु प्रिया के साथ रहो। बेटा मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन तुमसे यही विनय है कि तुम नीलाचल रहो, जगन्नाथ जी के पास रहो। तो इससे यह लाभ होगा कि जब यहाँ के गौड़ीय भक्त बंगाल से नवद्वीप से जाएंगे रथ यात्रा आदि में भगवान का दर्शन करने, तो वहाँ तुमसे भेंट होगी, तुम्हारा समाचार मिलेगा, और वहाँ के भक्त जगन्नाथपुरी से भक्तगण आएंगे गंगा स्नान करने के लिए नवद्वीप में, तो उनके द्वारा भी तुम्हारी खबर मिलेगी, तुम्हारा समाचार मिलेगा। ये तो वृंदावन चले जाओगे और तुम्हारे विषय में कोई जानकारी नहीं होगी तो मैं तो मर जाऊँगी। तो माँ की बात मानकर मातृभक्त शिरोमणि भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में आने का उपक्रम किए। अद्वैताचार्य जी से छुट्टी लेकर के और भक्तों से विदा होकर के वे चले। बीच रास्ते में कई देवालय का दर्शन करते हुए आए, जैसे साक्षी जैसे गोपीनाथ जी का, क्षीरचोर गोपीनाथ जी का दर्शन किए। क्षीरचोर गोपीनाथ में कैसे क्षीरचोर गोपीनाथ माधवेंद्र पुरी जी के द्वारा दिए गए चंदन को स्वीकार किए, और जो कि चंदन को वृंदावन ले जा रहे थे। भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि गोपाल जी में और हम में कोई भेद नहीं है, आप ये चंदन यहीं दे दीजिए। भक्त 40 शेर चंदन ले करके साउथ इंडिया से वृंदावन जा रहे थे भगवान को देने के लिए, क्योंकि बहुत दिन झाड़ी में थे, जमीन के अंदर दबे हुए थे। भगवान ने कहा कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे शीतलता चाहिए। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी भगवान के अंग को शीतल करने के लिए चंदन गए लेने के लिए, उधर से पैदल आना, और पैदल ही लेकर के 40 शेर चंदन जा रहे थे। ये है प्रेम भगवान के प्रति। उसमें साधन नहीं था कुछ भी, रथ थे, घोड़ा हाथी, तो सन्यासी थे, राजा नहीं थे। पहले राजाओं को ही ये सब सवारियां सुलभ थी, जनरल पब्लिक को ये सब सुलभ नहीं था। मधवेंद्र पुरी जी लाए, और उनके लिए देखिए, जो भक्त इतना सेवा कर रहा है भगवान की, तो मधवेंद्र पुरी जी के लिए भगवान क्षीरचोर गोपीनाथ जी ने खीर चुराया, वह अद्भुत घटना है। श्रीपद माधवेंद्र पुरी जी ने सुना कि गोपीनाथ जी रोज खीर खाते हैं। खीर है का मतलब है दूध को पकाते पकाते केवल गाढ़ा दूध बचता है, उसको खीर कहते हैं। बहुत अच्छा होता है गोपीनाथ जी का, और 12 सिकोरा में भोग लगता था, 12 बर्तन थे, भोग लगाया जाता था। माधवेंद्र पुरी जी ने सुना कि गोपीनाथ जी रोज खीर खाते हैं, इनका प्रसाद मिलता, जरा मैं भगवान के प्रसाद को खाता है। लेकिन वे अयाचित वृत्ति के थे, कभी मांगते नहीं थे किसी से कुछ भी, अपने आप अगर कुछ मिल जाता था तो उसको स्वीकार करते थे, मांगते नहीं थे। तो यह सुन करके कि गोपीनाथ जी खीर खाते हैं, उनको बहुत लोभ हो रहा था भगवत प्रसाद के लिए। ये स्वाभाविक है, पर वो मान नहीं सकते थे। तो बाजार में, गोपीनाथ जी के मंदिर से थोड़ा सा दूर बाजार में जब दुकान बंद हो रही थी, तो वहीं पर वे बैठे और उनको नींद आ गई। थके मांदे थे, 40 से चंदन लेकर के आ रहे थे, तो उनको नींद आ गई। नींद में वो जो ब्राह्मण पुजारी थे, भोग लगा रहे थे भगवान को, उनको भगवान ने सपना में दिया कि एक साधु इस दुकान के पास सो रहे हैं, उनको हमारा खीर दे देना, ऐसा कहा। तो पुजारी भोग लगाते थे, बाद में भगवान का प्रसाद लौटता था 12 कप, हम लोग उसको सिकोरा कहते हैं, इधर पता नहीं क्या कहते, ऐसे मिट्टी के बर्तन थे बड़े, और उसमें 12 जगह भोग लगता था। पुजारी उठाया, वो बेचारा गिना नहीं, रोज रोज गिनना क्या था, उठा करके और ले जा करके रख दिया। बाद में भगवान ने सपना दिया पुजारी को कि मैं खीर रखा हूँ। एक घटना के बाद में वो जोहने लगा पुजारी की खीर क्या हुआ, पारा नहीं था, उठाते समय नहीं देखा, बाद में गिनने लगा तो एक नहीं है, तो बड़ा फिर पड़ा कोई लिया है क्या किया। खैर उसको चिंता नहीं हुई इसलिए कि भगवान खा चुके थे, तो 12 हो चाहे 11 हो कोई चिंता नहीं। लेकिन पुजारी को भगवान ने स्वप्न दिया कि एक साधु आए हैं, भूखे सोए हैं बाजार में दुकान के पास, तो उनको एक खीर ले जा करके दे देना, वो खीर मैं अपने पास ही रखा हूँ। अल्टर से भगवान उसको हटा करके आड़ में रख दिए थे, पीतांबर से ऐसे आड़ में हो गया था, तो पुजारी देखा नहीं, ले गया था। बाद में उसको जब स्वप्न हुआ तो वो खीर भी देखा भगवान के सवेरे, खीर छिपाया हुआ है। बहुत से आनंद हुआ पुजारी को, तो वह हुआ ले करके बर्तन और माधवेंद्र पुरी जी की खोज करने लगा। पता नहीं ये रात में शयन के पूर्व की घटना है खीर लेने की कि भोर की, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, इतना ही रात में ही घटना हुई थी। तो पुजारी जोहने लगा खीर लेकर के, कहाँ है माधवेंद्र पुरी जी, कहाँ है माधवेंद्र पुरी जी। तो मिले उनसे, पुजारी जी ने कहा कि आपके लिए भगवान ने ये खीर भेजा है, जिसका वो मनोरथ कर रहे थे, अयाचित व्यक्ति थे, तो भगवान ने स्वयं ही भेज दिया। आपका नाम मधुरपुरी है, हाँ आपके लिए गोपीनाथ जी ने ये खीर भेजा है। किस तरह से पूरे बर्तन में से एक चुरा करके भगवान रखे अपना प्रसाद अपने भक्त को देने के लिए, ये कथा श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे। नित्यानंद प्रभु, हरिदास जी और सब भक्त कई चल रहे थे, तो रास्ते में छिर कर गोपीनाथ जी पड़े बालेश्वर के पास, तो वहाँ ये कथा चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कैसे कैसे छीर खीर चुराया गोपीनाथ जी ने। तो मधुवेंद्र पुरी तो ये सुनते ही विह्वल हो गए, उन्हें रोमांच होने लगा, आंसू आने लगा भगवान का प्रेम देख कर। अंत में वे खाए, इतना अमृत विनिंदक स्वाद था उसमें, बहुत प्रेम से खाए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान का खाया हुआ था। वो खाए और उस बर्तन को, छोटा बर्तन था, उसको तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर लिए, और बाद में थोड़ा थोड़ा रोज खाते खाते उसको भी खा गए। तो वहाँ से चले हैं। चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर आए और लिंगराज जी का दर्शन किए, कीर्तन किए, इसका वर्णन है। और कटक आने के प्रसंग में ही साक्षी गोपाल जी का वर्णन है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया। इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर आए, इसको वृंदावन, इसको श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत संक्षेप में लिख रहे हैं। एही मते महारंगे शेरात्रि वंचिला प्रभाते चलिला मंगल आरती देखिया। ये मंगल आरती साक्षी गोपाल जी के मंगल आरती का वर्णन किया गया है। तो साक्षी गोपाल जी की कथा नित्यानंद प्रभु ने कहा था, दोनों भाई इस तरह से कथा कहते हुए महात्म बताते हुए आ रहे थे। मंगल आरती देखे और चले, प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया, भुवनेश्वर पथे जैसे कैला दर्शन विस्तारी वर्ण्याचन दास वृंदावन। भुवनेश्वर में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए, यहाँ अनेक मंदिर थे उसी समय से, इसको लिखा भी जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, जगह जगह लिखा गया, बहुत अच्छा वर्णन है, ये मंदिरों का नगर है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिरों का दर्शन किया, जिसमें मुख्य है लिंगराज और अनंत पद्मनाभ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनका दर्शन किया, तो इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से किया। कमल पूरे आशी भार्गी नदी स्नान कैल नित्यानंद हाथे प्रभु दंड जय धरिल। ये भार्गी नदी कहाँ है? अच्छा, हो सकता है नाम बदल गया हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर में आकर के भार्गी नदी में स्नान किए। कमलपुर अभी है, ठीक है। कमलपुर में आकर के भार्गी नदी में स्नान किए और नित्यानंद प्रभु के हाथ में दंड दिए कि आप ले चलिए। नित्यानंद प्रभु के हाथ में दंड दिए, त्रिदंड। और कपोतेश्वर देखते गेला भक्तगण संग, यथा नित्यानंद प्रभु कैला दंड भाव। तो कपोतेश्वर का दर्शन करने गए। भगवान शिव का कोई मंदिर है, भगवान शिव के नाम में हमेशा ईश्वर 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 शब्द लगाया गया है, क्योंकि इस प्राकृत जगत के वही ईश्वर है, कंट्रोलर है। तो कपोतेश्वर देखने गए भक्तगण संगे, भक्तों के साथ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये भेद नहीं करते थे कि ये शिव जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ये है वो। दर्शन करते रहते थे और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों के साथ दर्शन कर रहे थे। भक्तों के साथ दर्शन करने गए। जब प्रभु दर्शन करने गए तो हेथा नित्यानंद प्रभु कैला दंड भंगे। नित्यानंद प्रभु ने दंड को तीन जगह तोड़ दिया। यह बहुत बड़ा अपराध लोक दृष्टि से माना जाएगा, ये धर्म दंड माना जाता है। कल मैं लेकर के आ रहा था तो एक एयरपोर्ट में व्यक्ति मिला, महाराज आपका धर्म दंड कहाँ है? अपने लगेज में डाल दिया था। कौन खिचकाच करे, लगेज में डाल देते थे। वो कहा नहीं, आप हाथ में लेकर जा सकते थे, धर्म दंड है। मैं पहली बार सुना धर्म दंड, मैं तो त्रिदंड सुनता था। तो ये धर्म दंड है वास्तव में, तो इसे तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं, इसका तिरस्कार तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवता बसते हैं त्रिदंड में। चैतन्य भागवत में कहा गया है, बाद में नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे नित्यानंद कहाँ मोर दंड, नित्यानंद कहे दंड हैल तीन खंड। भगवान ने पूछा कि नित्यानंद मेरा दंड कहाँ है? नित्यानंद प्रभु कहे वो तो तीन खंड हो गया। क्यों, कैसे हुआ? ऐसा हुआ ना, आप कीर्तन में नाच रहे थे जोर से, आपको मैं संभाल रहा था, तब तक अकस्मात आप और हम दोनों गिर गए दंड पर। तो दो जगह खंडित हो गया, तो तीन टुकड़ा हुआ कि नहीं? आप गिरे और इसके बाद मैं गिरा, तो तीन टुकड़ा हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथपुरी ला करके यही हित किया ना, एक ही धन मेरे पास था, मैं सब कुछ छोड़ दिया था, एक ही धन था त्रिदंड, और उसको भी तुमने तोड़ दिया। मैं अब किसी के साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग आगे जाओ चाहे पीछे चलो, मैं साथ में नहीं चलूंगा। ये अद्भुत लीला है, इसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ लिख रहे हैं संक्षेप में। कमलपुरे आशी भागी नदी स्नान कैल नित्यानंद हाथे प्रभु दंड जे धरिल। कपोतेश्वर देखते गेला भक्तगण संगे हेथा नित्यानंद प्रभु कैल दंड भंगे। नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ दिया। तीन खंड करी दंड दिल भाषाइया, भक्त संगे आयल प्रभु महेश देखिया। नित्यानंद प्रभु त्रिदंड को, एक दंड वो था वास्तव में, त्रिदंड नहीं था, उसको तीन खंड करके और नदी में भसाई, फेंक दिए, डुबा दिए, बहा दिए। और तब तक भगवान अपने भक्तों के साथ दर्शन करके, महेश का, भगवान शिव का दर्शन करके, कपोतेश्वर का दर्शन करके आए। जगन्नाथे देउल देखी आविष्ट हैला, दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। जगन्नाथ देव के मंदिर को दूर से देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए, केवल गुंबज देख करके प्रेमाविष्ट हो गए। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हैला, दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। दूर से वहां से जहां से भगवान का मंदिर दिखाई दिया गुंबज, तो उसको देख करके दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद प्रेम में लगे नाचने, जगन्नाथ जी का गुण गा कर। भगवान कृष्ण स्वयं भक्त बन करके जगत को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, तो नाचने लगे। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला, भक्तगण आविष्ट हैया सबे नाचे गाय, प्रेमावेश प्रभु संगे राज मार्ग जाए। भक्तगण भी बहुत आवेश में थे, वो जा रहे थे गाते हुए नाचते हुए जा रहे थे, बीच बीच में दंडवत कर रहे थे और नाचते थे, तो कभी कभी घेरा करके चलना छोड़ करके आपस में नाचने लगते थे घूम घूम करके। तो तीन कोस का रास्ता ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों कोस का मार्ग बन गया, और प्रेमावेश में नाचते थे गाते थे फिर चलते थे जगन्नाथ जी को देख करके, मंदिर को देख कर। भक्तगण आविष्ट हैया सबे नाचे गाय, प्रेमावेश प्रभु संगे राजमार्ग जाए। हंसे कांदे नाचे प्रभु हुंकार गर्जन, तीन कोस पथ हैला सहस्र योजन। चैतन्य महाप्रभु हुंकार करते थे, प्रेम में रोते थे, गाते थे अपने प्राणनाथ को मैं यहाँ पाया, द्वारका ब्रज छोड़ करके भगवान यहाँ आए हैं। तो इस भाव से चैतन्य महाप्रभु बहुत नाच रहे थे, गा रहे थे, हंसे कांदे नाचे, हंस रहे थे कांदे रो रहे थे, नाचे प्रभु हुंकार गर्जन, तीन क्रोस पथ हैला सहस्र योजन। वहाँ से तीन कोस का पथ है 6 माइल का, लेकिन अब सहस्र योजन हो गया। इतना देर कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, चलते, अथवा इसका एक भाव यह है कि वह तीन कोस का मार्ग भगवान चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगता था कि सहस्र योजन है। इसका अर्थ उत्कंठा बढ़ रही थी, कब पहुंच जाए जगन्नाथ जी में, कब पहुंच जाए, कब दर्शन करें। चलते चलते प्रभु आइला अठार नाला, तहाँ ऐसे प्रभु किछु बाह्य प्रकाश ला। अठार नाला आज भी है ना, ये सब हम लोग मुझे देखे नहीं हैं। अठार नाला पर आए तो वहाँ आने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ बाह्य प्रकाशित किया अपनी चित्त को, भाव रोक करके और बाह्य वृत्ति हुई। तो नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, अब पूछ रहे हैं भगवान कि नित्यानंद मेरा दंड दो। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, नित्यानंद बोले दंड हैला तीन खंड। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दंड कहाँ है, दंड तो तीन खंड में टूट गया। टूट गया कैसे टूटा? नित्यानंद बोले दंड हैला तीन, प्रेमावेश पड़िले तुम्ही तुम्हारे धरिनु तुम्हा सह से दंड ऊपर पड़िनु। आप प्रेमावेश में नाच रहे थे गा रहे थे, तो मैं आपको पकड़ने चला तब तक प्रेमावेश में आप दंड पर गिर गए और मैं भी गिर गया, तो इसलिए तीन खंड हो गए। प्रेमावेश पड़े तुम्हें तुम्हारे धरिनु तुम्हा सह से दंड ऊपर पड़िनु, दुई जनार भरे दंड खंड खंड हैला, से खंड कहाँ पड़ीला किछु ना जाने। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो टूट गया दंड हम लोग दोनों के गिरने से, तो वो खंड कहाँ है, दंड का तीन टुकड़ा कहाँ है? नित्यानंद प्रभु कहते वो मैं नहीं फिर केयर किया, अब टूट गया तो क्या उसको ढोना है, मैं फिर विचार नहीं किया, कहीं पड़ा होगा चाहे कोई ले जाकर ईंधन किया होगा फेंका होगा हम नहीं जानते। और चैतन्य भागवत में लिखा गया है कि जब नित्यानंद प्रभु से भगवान ने कहा तुमने क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, इसमें 33 करोड़ देवता का वास है, तो ऐसे है वैसे है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके कंधे पर 33 करोड़ देवता चले, तो इसने मैं तोड़ दिया। देवता सब आपके दास हैं, सेवक हैं, वो आपके कंधे पर क्यों रहेंगे? आपको क्या जरूरत है दल ढोने की? और आप धोते भी कहाँ हैं? आप तो नाचते हैं हाथ ऊपर करके और ये दूसरे को ढोना पड़ रहा है, बेकार है। अब तो दल ढोते नहीं, इसलिए मैंने तोड़ दिया। तो फालतू भार हो रहा था, हाथ खाली रहेगा, आप नाचेंगे गाएंगे। इतना सुन करके चैतन्य महाप्रभु बाह्य कोप प्रकाशित किए नित्यानंद प्रभु के सामने। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सही खंड कहाँ पड़ी किसी ने जानी लो, मोर अपराधे तुम्हार दंड है खंड, जे उचित है मोरे कह करत तहा दंड। मेरे अपराध से आपका दंड खंडित हो गया, और आपकी जो इच्छा हो जो दंड देना चाहे दीजिए। तो खंडित तो हो ही गया, अब जोड़ा नहीं जा सकता, वेल्डिंग नहीं कराया जा सकता, तो अब तो हो गया, लेकिन आपकी जो इच्छा हो जो दंड देने की इच्छा हो दीजिए। सुनी किछु महाप्रभु दुख प्रकाशिला, ईसत क्रोध करी किछु कहिते लगिला। सुनते ही चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा बनावटी क्रोध प्रकट किए, क्रोध में कहने लगे, मिला चले आनी मोर सबे हित कैला, सबे दंड धन छिलता है ना राखिला। नीलाचल में ला करके तुम लोगों ने हमारा बहुत हित किया, यही हित किया ना कि हमारा धर्म तोड़ा, हमारा धर्म दंड तोड़ दिया। सबे दंड धन छीला, मेरे पास केवल एक धन था वो दंड। दंड भी बहुत बड़ा धन है, अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो दंड को देख करके लोग प्रणाम करते हैं और पैसा भी देते हैं, सन्यासियों को बहुत आदर करते हैं, तो ये ट्रेडमार्क है, बहुत बड़ा धन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, तो केवल बाह्य कोप कर रहे हैं कि सबे दंड धन छिला, ये कहीं धन था दंड और उसको भी आपने तोड़ दिया। सबे दंड धन छिला तह न रखिला, तुम्हें सब आगे जाह ईश्वर देखिते, तुम्हें सब आगे जाह ईश्वर देखिते, किवा आमी आगे जाब ना जाब सही पे। अब तुम सब लोग आगे जाओ जगन्नाथ जी को देखने के लिए, और नहीं तो मैं जाऊंगा। एकदम पीछे चलो, नहीं तो आगे जाओ, हम साथ में नहीं जाएंगे। ये भगवान की अजीब लीला है, जगन्नाथ जी को देखने के लिए कह रहे हैं भक्तों को, यहाँ नवदीप से सब साथ में आए हैं और यहाँ आकर के कहते हैं तुम लोग आगे जाओ ईश्वर देखे थे, भगवान को देखने के लिए आगे जाओ दर्शन करने के लिए, और नहीं तो मैं जाऊँगा। अब जिद कर गए, इससे थोड़ा सा क्रोध करके, बनावटी क्रोध करके, हम नहीं जाएंगे, हमारा इस तरह से तुम लोग धर्म नष्ट कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे। अद्भुत लीला है भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो आगे जाओ सब, और नहीं तो मुझे जाने दो। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं मुकुंद दत्त ने कहा, मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम ही जहा आगे, आमी सब पाछे जाब ना जब तुम्हारे संग। मुकुंद जी ने कहा, मुकुंद दत्त ने कहा कि प्रभु आप ही आगे जाइए, आप आगे जाइए, ठीक है आप, हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। जब मुकुंद दत्त ने कहा कि आप आगे जाइए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो तुम लोग साथ जाओगे? तो कहे नहीं नहीं नहीं, हम लोग पीछे चलेंगे, आप आगे जाइए। यह चतुराई है वास्तव में, अरे आगे जाएंगे तो देखते हुए जाएंगे, और अगर पीछे रह जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु को हमेशा संभालना पड़ता था, प्रेमावेश में कहीं भी गिर पड़ते थे, नाचते थे, रोते थे, गाते थे। मुकुंद दत्त ने कहा कि आप आगे जाइए, हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, आप आगे जाइए। ये घटना पर हमें एक बात याद आ रही है, एक बार 15-16 वर्ष का एक लड़का पागल हो गया था, तो उसका पिता उसको आकर के पकड़ा हमारे गांव के पास, तो कच्ची सड़क थी, तो आकर के पकड़ा, चलो चलो चलो। तो वो पीछे अगर छोड़ते थे तो चलता नहीं था, बैठ जाता था और आगे चल ही नहीं रहा था। एक बार हमारे सामने ही उसके पिता ने कहा, तुम आगे चलो। तो लड़का कहता है, आगे चलो, आगे आगे चलना बाप का काम है कि बेटा का? मैं बाप बन जाऊं? तो पागल था ये, और मैं बाप बन जाऊं? बाप बना है तो आगे आगे चलो, बेटा का काम है पीछे पीछे चलना। और बेचारा आगे चलता था तो ये बैठ जाता था। हम तो ऐसे उल्ले जा रहा था। ये चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से कहते, तुम लोग आगे आगे जाओ या हमको जाने दो। मुकुंद जी समझ गए कि तो पीछे रहेंगे तो पता नहीं कितना लेट करेंगे, कहाँ रह जाएंगे। ठीक है, आप आगे चलिए, हम लोग साथ नहीं जाएंगे, थोड़ा दूर रहेंगे। उनके कहने का अर्थ यह था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतना जोर से चले कि सब पीछे छूट गए, बहुत पीछे छूट गए। मुकुंद दत्त कहे, प्रभु तुम्हें जहाँ आगे, हमी सब पाछे जाब ना जब तुम्हारे संगे। मेरा उच्चारण कुछ भिन्न होगा हिंदी जैसा, मैं बंगला पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो क्षमा करेंगे। जैसे बंगाल के लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, ऐसा मैं नहीं पढ़ सकता, परंतु तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एत सुनी प्रभु आगे चलेला शीघ्र गति, बुझी ते न पारे के दुई प्रभु मति। इतना सुन करके जब मुकुंद जी ने कहा कि आप आगे जाए, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, बहुत शीघ्र गति से चले। और नित्यानंद प्रभु और पीछे छूट गए मुकुंद आदि के साथ। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दोनों प्रभु के मति को, अभिप्राय को कोई नहीं समझ सकता है। क्या धारणा, क्या आशय है उनका आगे दौड़ करके जाने का, और नित्यानंद प्रभु के दंड भंग का क्या आशय है, कोई नहीं समझ सकता। वास्तव में दोनों प्रभु हैं, भगवान हैं, और उनके हर एक अभिप्राय को कौन जान सकता है। यह केन दंड भांगे, तेह केन भांगा है, भांगा या क्रुद्ध है, बुझा नहीं जाए। नित्यानंद प्रभु ने क्यों दंड तोड़ा और क्यों नदी में भसा दिया, तो कोई नहीं जानता है। और भंगा या क्रुद्ध है, बुझा नहीं जाए। और दंड भंग होने पर चैतन्य महाप्रभु क्रोध किए, इन सबों का आशय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, कौन समझ पाएगा। दंड भंग लीला ही परम गंभीर, सही बुझे दुहार पद जार भक्ति धीर। दंड भंग क्यों किया नित्यानंद प्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु क्यों क्रोध किए, क्यों आगे भागे, इन सब लीलाओं का रहस्य वास्तव में वही जान सकता है जिस पर इन दोनों प्रभु की कृपा हो, जिस पर निताई गौरांग की कृपा होगी वही समझ पाएगा। हमको तो रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहने में आनंद आ रहा है। ठीक है, लीला कहने में आनंद आ रहा है, पर क्यों वो तोड़े, क्यों क्रोधित हुए, क्यों आगे भाग रहे हैं, तो वो दोनों जाने। ब्रह्मांड देव गोपाल महिमा ये धन, नित्यानंद वक्ता जर श्रोता श्री चैतन्य। इस अध्याय में पूरे अध्याय का समाहार कर रहे, उपसंहार कर रहे हैं कि गोपाल जी ब्रह्मांड हैं। एक ब्राह्मण भक्त के बात को पूरा करने के लिए वे आए थे। बूढ़े ब्राह्मण ने कह दिया था कि गोपाल जी कहेंगे तब अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, तो बड़े लड़के ने कहा था। तो दोनों ब्राह्मण थे, छोटा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण और धनी ब्राह्मण, दोनों भक्तों के वचन की रक्षा के लिए भगवान ब्रज छोड़कर के आए थे साक्षी गोपाल जी। नित्यानंद वक्ता जर श्रोता श्री चैतन्य, और साक्षी गोपाल जी की लीला के वक्ता नित्यानंद प्रभु थे और सुनने में प्रमुख थे चैतन्य महाप्रभु। वो तो चार ही थे, चार ही साथ में आए थे नवद्वीप से। तो नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल जी की कथा कहे, श्रद्धा युक्त हैया इहा सुने जय जन अचिरे पाइब से गोपाल चरण। इस अध्याय में जो साक्षी गोपाल जी की कथा है, इसको श्रद्धा के साथ कोई व्यक्ति सुनता है तो उसे भगवान कृष्ण का चरण कमल शीघ्र प्राप्त होता है। अचिरे पाइबे से गोपाल चरण श्री रूप रघुनाथ पदे जा रे आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में जिसका अनन्य भरोसा है, आस है, ऐसा कृष्णदास इस चैतन्य चरितामृत कथा को लिख रहा है। चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक परिच्छेद अध्याय के अंत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ रूप गोस्वामी और श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की वंदना किए हैं और हमेशा यही लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। प्रत्येक अध्याय का अंत में लिखे। अब किस तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन किए, जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किए और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किए, इसका वर्णन किया जा रहा है। प्रत्येक अध्याय के शुरू में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संस्कृत के श्लोक की रचना की है। उस अध्याय में जो लीला आती है उसको संक्षेप में कह करके प्रणाम किए हैं चैतन्य महाप्रभु। ये छठा परिच्छेद हम प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग बोलिए। नौमी तम गौरचंद्रम यह कुतर्क कर्कश आशयम सार्वभौमम सर्वभूमा भक्तिभूमानम आचरत। नौमितं गौरचंद्रं यः कुतर्क कर्कशाशयं सार्वभौमं सर्वभूमा भक्तिभूमानम आचरत। याद कर लेना चाहिए, तीन चार बार पढ़ने पर याद है। नौमितं गौरचंद्रं यः कुतर्क कर्कशाशयं सार्वभौमं सर्वभूमा भक्तिभूमानमाचरत्। नौमितं गौरचंद्रं यः कुतर्क कर्कशाशयं सार्वभौमं सर्वभूमा भक्तिभूमानमाचरत्। बोलिए तो चला जी। कुतर्क कर्कशाशयं सार्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमान आचरण। नौमितं गौरचंद्रं यः कुतर्क कर्कशाशयं सार्वभौमं सर्वभूमा
भक्ति भूमान आचरण
भक्ति भूमान आचरण। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रत्येक पयार में, प्रत्येक परिच्छेद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये यह पयार भी लिखते गए प्रारंभ में। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, और समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। अब किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर का, श्री भगवान का दर्शन किया, इसका वर्णन प्रारंभ करें। आवे से चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हईला अस्थिरे। अविश में चैतन्य महाप्रभु चले जा रहे थे, आगे गए थे, जैसा पहले आप लोगों ने सुना, बहुत तेज गति से जा रहे थे। आवेश से चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिर है, और मंदिर में भी गए तो बिल्कुल भक्त के आवेश में थे। कई प्रकार का आवेश चैतन्य महाप्रभु को होता था, कभी कभी राधा रानी का आवेश, कभी ब्रजवासी का, सखा का, कभी सेवक का आवेश होता था, मैं सेवक हूँ जगन्नाथ जी का। आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ देखी प्रेम हईला अस्थिर है, अस्थिर हो गए, बहुत प्रेम के विकार आ रहे थे जगन्नाथ जी को देखते ही। जगन्नाथ आलिंगित चलीला धाइया, मंदिर पड़िया प्रेम अविष्ट हईया। जगन्नाथ जी को देख करके चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करने के लिए दौड़े, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए, आवेश में वे अस्थिर हो रहे थे, स्तब्ध विकार हुआ और वे मंदिर में गिर गए। तो प्रणाम किए, इसके बाद प्रणाम नहीं किए, आवेश में जा रहे थे आलिंगन करने के लिए, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए, तो गिर गए मंदिर में। मंदिर में पड़िया प्रेम अविष्ट है, मंदिर में पढ़ करके और अविष्ट हो गए, प्रेम में आविष्ट हो गए। दैवे सार्वभौम तहाँ के करे दर्शन, परीक्षा मारिते तेहाँ कैला निवारण। दैव जोग से सार्वभौम भट्टाचार्य जी वहाँ पर भगवान का दर्शन करने आए थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए आ रहे थे, फिर गिर गए, और गिरने के बाद ऐसा विकार हुआ कि सांस भी रुक रही थी, कई प्रकार के विकार हो रहे थे। तो जो मंदिर के पंडित लोग हैं, परीक्षा कहते हैं उनको ना, परीक्षा, तो वे हाथ में छोटा छोटा छड़ी लिए रहते हैं, आज भी वो लोग आशीर्वाद देते हैं। तो वे दौड़े मारने के लिए कि उसके यहाँ करके मंदिर में बेहोश हो गया कि मर गया, ये कौन है, कहाँ का है। इतना आवेश हो गया कि कोई शरीर का इंद्रियां काम नहीं कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो वे लोग समझे कि यह मर गया, ऐसा सोच रहे थे, या अथवा जीवित गए तो ये इधर क्यों आ रहा है भागा हुआ। उन्होंने देखा कि इतना इसकी बाहों में आवेश है, स्पंदन है, कि जगन्नाथ जी को पकड़ने दौड़ा। तो वे लोग दौड़े मारने के लिए, मार करके हटाने के लिए। तब तक सार्वभौम जी की दृष्टि पड़ गई, उन्होंने देखा तो उन्होंने निवारण किया। वे महाराज प्रताप रुद्र के पुरोहित थे, गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। ऐसे ऐसे पास शंकराचार्य के लाइन में रह पड़े थे निर्विशेष बाद में, लेकिन फिर भी वे वैष्णव थे, वैष्णव के प्रति उनका बहुत आदर था। और महाराज प्रताप रुद्र के विराज गुरु थे, इसलिए मंदिर में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब मारने दौड़े पंडित लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने निवारण किया। परीक्षा मारिते तेह कैला निवारण, प्रभुर सौंदर्य और प्रेमेर विकार देखी सार्वभौम रहिला विस्मय अपार। भगवान चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देख करके, उनके ब्यूटी को देख करके, और उनके प्रेम के विकार को देख करके, वे बिल्कुल अपार विस्मय में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया था और ये प्रेम के विकार का भी उनको अध्ययन था। यह जान गए कि किसी मनुष्य में ऐसा विकार संभव नहीं है, कृष्ण के प्रति ऐसा विकार किसी मनुष्य में संभव नहीं, और ऐसा सुंदर कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। सौंदर्य और प्रेम विकार दो को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत विस्मित हो गए। प्रभुर सौंदर्य और प्रेमेर विकार देखी सार भौमे रहिला विस्मय अपार, बहु छड़े चैतन्य नहे भोगेर काल हैला, सार भौम मने तबे उपाय चिंतिल। तो पढ़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु, सार भौम भट्टाचार्य ने तो निवारण कर दिया उन लोगों को मारने से, लेकिन अब भोग लगने का समय आ गया, इसको बाहर करना ही पड़ेगा। सार भौम भट्टाचार्य बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या किया जाए, क्योंकि जब भोग लगता है तो उस समय कोई रास्ते में इधर उधर नहीं होना चाहिए, आज भी नियम है ना। इनकी जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है कि वो भोग खाते समय भी दर्शन देते ही रहते हैं। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं तो भगवान अब आराम से खाए बंद करके, तो ठीक नहीं समझते, तो खाते समय भी दर्शन होता रहता है, लेकिन भोग जब ले जाया जाता है तो उस पथ में कोई नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति टच नहीं होना चाहिए पुजारियों के, पुजारियों से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे, बहुत क्षण चैतन्य न है, बहुत काल तक चेतना ही नहीं रहे, भोग काल है और भोग जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय हो गया। तो सार्वभौम माने तब उपाय चिंतित, तो उपाय किए, अब उसमें चेतना आ नहीं रही थी और कुछ लोगों को तो शंका हो गई पांडवों को कि ये मर गया, उस उन लोगों की इस दुर्भावना के पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उपाय किया कि शिष्यों द्वारा, उनके कुछ शिष्य वहां आए थे, शिष्य मतलब विद्यार्थी ही नहीं, उनके अपने शिष्य बहुत परिचित पहले के शिष्य परीक्षा द्वारा मिला बहाइए, कुछ उसमें परीक्षा थे, कुछ पंडित थे जो उनके शिष्य भी थे या और थे, तो उनके द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य टंगवा करके ले गए चैतन्य महाप्रभु को अपने घर। सार्वभौम भट्टाचार्य का घर देखे हैं ना आप लोग, तो वहाँ ले गए, टंगवा करके ले गए। अब सब लोग हाथ पैर पकड़ कर टांग कर ले गए कि खाट पर ले गए, कैसे ले गए इसका यह वर्णन नहीं है, लेकिन जैसे भी हो वो बहाइया बहाइया ने बहन करा करके टंगवा करके ले गए अपने घर ले गए। श्वास हाँ, शिष्य परिषद द्वारा नीला बहाइया घरे आनी पवित्र स्थाने राखी लुहाइये, तो घर में ला करके, वो तो गृहस्थ का घर था और ये है सन्यासी, वेशभूषा सब पता चल रहा था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक पवित्र स्थान पर, इसका मतलब है ऐसा कपड़ा होगा जो कभी कोई पहना नहीं, कोई बिछाया नहीं होगा, और घर द्वार लिपा हुआ था, तो पवित्र स्थान में ले जा करके राखी लसवाइया सुलाए, वैसे बेहोश हो गया है कोई आदमी तो ले जा करके सुलाया जाएगा, यही तो किया जाएगा। और अब वहाँ सुला करके और परीक्षा करने लगे कि ये जीवित है महापुरुष के शरीर छोड़ दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत चिंतित हो रहे थे, तो सूक्ष्म में श्वास प्रश्वास नहीं उदर स्पंदन देखिए चिंतित है भट्टाचार्य मन। श्वास प्रश्वास नहीं, श्वास मतलब हवा को भीतर लेना, प्रश्वास मतलब बाहर करना, तो न सांस आ रही थी न सांस जा रही थी, सिर्फ देखने पर स्पष्ट रूप से, और न ही उधर स्पंदन, और न तो उधर में कोई स्पंदन हो रहा था, सांस लेने पर पेट फूलता है नीचे जाता है, ये सब कुछ नहीं था। बड़े ध्यान से देखने लगे, देखे कि सांस नहीं है, प्रश्वास नहीं है, उधर स्पंदन नहीं है, छाती भी नहीं धड़क रही है, इसमें स्पंदन नहीं हो रहा है, उनका चीत बहुत व्याकुल हो गया, लगता है कि इनका शरीर छूट गया है, बहुत चिंता में पड़ गए। सूक्ष्म तुला आनी नस अग्रत धरिला ईसा तो चलाए तुला देखी धर झलो, तो बहुत सूक्ष्म रुई कपास की रुई को लेकर उनके नाक के पास रख भगवान चैतन्य महाप्रभु के, अगर थोड़ा भी सांस चलता होगा तो ये जरूर हिलेगा, तो रुआ हिला, तो सांस चल रही थी, पर ये देख करके सर्वम भट्टाचार्य जी को धैर्य छुला के ठीक है अभी प्राण है। शरीर तो बहुत सुंदर था, तो इस तरह से उनको धैर्य हुआ। और जगह बार बार छू रहे थे हाथ, इधर इधर हाथ कर रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के छाती पर, तो कोई स्पंदन नहीं था। इतना कम श्वास चल रहा था, कोई स्पंदन नहीं, पेट भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, आंखों की पलक गिरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, निष्पंद हो गए। देखने में ऐसा लगता था कि शरीर छूट गया, प्राण चला गया। तो अंत में उन्होंने रुई लेकर के श्री नासिका के पास रखा, उसमें स्पंदन हो रहा था, तब सार्वभौम भट्टाचार्य को धैर्य हुआ। ईसत चलय तुला देखी धैर्य हल, बसी भट्टाचार्य मने करे न विचार, एक कृष्ण महाप्रेमेर सत्वी कलिका। चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ कर सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कर रहे थे, ये तो कृष्ण प्रेम का विकार, महाप्रेम का विकार। बहुत अभिज्ञ व्यक्ति थे, भगवान के परम भक्त थे, परंतु किसी मनुष्य को इतना जल्दी भगवान मान लेना वो कैसे कर सकते थे। आजकल के तो बुद्धू लोग मान लेते हैं किसी को भगवान तुरंत, कोई बुद्धि नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किसी को थोड़ा हाथ ऊपर करके देख लिया तो ये उसको भी चैतन्य महाप्रभु कह देते। ऐसे ऐसे देखा है, ऐसे हाथ कर दिया बस चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो गया। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान नहीं मान रहे थे, और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति आकर के मंदिर में पड़ जाए, बेहोश हो जाए, कितने कीर्तन गाते हैं, गीत गाते हैं, और कुछ लोग ऐसे मंदिर में पड़ जाते हैं लगता है कि अरे प्रेमावतार हो गए। और कोई कोई भक्त बहुत डिस्टर्ब होते हैं प्राय। एक बार ऐसा है चैतन्य चरितमानस में कि एक व्यक्ति को मारने लगे वैष्णव लोग, झूठ मूठ के आकर के ऐसे दिखा रहा था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये तो चमत्कृत हो गए कि ये महाकृष्ण प्रेम का विकार है, इतना निश्चित है। और यह भी सोचने लगे कि मनुष्य में ऐसा विकार कैसे संभव हो सकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसी लीला कर रहे थे, कोई उनको भगवान कहेगा नहीं, अरे सौंदर्य देखेगा तो कहेगा हाँ भगवान है, ये प्रेम का विकार देखेगा। लेकिन ऐसे आकर के मंदिर में पड़ जाना, सांस भी नहीं चल रहा, इसको कौन मानेगा कि ये भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य को इसीलिए यहाँ कुतर्क कर के साश्रम कहा जा रहा है। कुतर्क से इनके हृदय कर्कश हो गया था न्याय पढ़ने से, ये जल्दी स्वीकार नहीं किए चैतन्य महाप्रभु, जबकि आंख से सामने देख रहे हैं, देखने से क्या होगा। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का धरातल बना दिया, अर्थात जहाँ से भक्ति का पोषण होगा, भक्ति जन्म लेगी, इतना बड़ा बना दिया सार्वभौम भट्टाचार्य। नवमितम गौर चंद्रम या कुतर्क कर्क शासन सार्वभौम सर्वभूमा, सर्वभूमा चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, जो सबके आधार हैं, सबके आश्रय हैं। उस चैतन्य महाप्रभु ने कुतर्क कर्कश हृदय सार्वभौम को भक्ति का धरातल बना दिया, जहाँ से भक्ति जन्म लेगी, सभी भक्तों का पोषण होगा, इतना महान बनाया उनको। तो उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि अब भट्टाचार्य, बसी भट्टाचार्य मने करे न विचार, यही कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। सुदीप्त सात्विक यही नाम जे प्रलय, नित्य सिद्ध भक्त जे सुदीप्त भाव है। ये सुदीप्त भाव में एक एक भाव है प्रलय, पूरा पूरा श्वास प्रश्वास का रुक जाना और पलक नहीं चलना और शरीर में रोमांच आदि, तो अलग अलग चीज है। यह नित्य सिद्ध भक्त में हो सकता है, नित्य सिद्ध भक्त जो सुदीप्त भाव है, अधिरूढ़ भाव जार तार ये विकार, मनुष्य देह मनुष्य देह देखी बड़ चमत्कार। ये सब वो पढ़े थे कि भगवान के जो नित्य पार्षद हैं प्रेमी है ब्रज में, उनमें यह अधिरूढ़ भाव हो सकता है। और वह अभी वास्तव में सब में नहीं होता है, राधा रानी में होता है या भगवान की अन्य सखियों में होता है, सब जगह भाव नहीं रहता है। ये सब भाव के विकार मनुष्य के देह में देख करके सर्वम भट्टाचार्य को बहुत चमत्कार हो रहा था, आश्चर्य कर रहे थे। एतत् चिंती भट्टाचार्य आछेन बसिया नित्यानंदादि सिंह द्वारे उत्तर लग गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह से सोए हैं, बिल्कुल प्रश्वास श्वास प्रकट नहीं चल रहा। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत चिंता में होकर के बैठे थे, बैठे थे सोच रहे थे कैसे मनुष्य के देह में ऐसा विकार संभव है। कभी कभी उनके मन में आ रहा था कि ये मनुष्य नहीं है, फिर मन में सोच रहे थे अगर मनुष्य है तो ये विकार कैसे। तब तक तो नित्यानंद प्रभु मुकुंद और हरिदास ठाकुर तो दूर लगे, नित्यानंद मुकुंद आदि आए पूछते पूछते, जानते थे कि ये जगन्नाथ जी के मंदिर में आए होंगे, बहुत तेज चले थे वे लोग, पीछे से हाँफते दौड़ते हुए आए आए मंदिर में जगन्नाथ जी के, देखे तो नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को तो सार्वभौम भट्टाचार्य उठा करके ले गए थे, वो नहीं है। फिर पूछे यहाँ एक सन्यासी आए थे लंबा शरीर और गोरे वर्ण के सुंदर, तो लोगों ने कहा हाँ हाँ यहाँ आया था, आते बेहोश हो गया तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसको उठवा कर ले गए, लोगों ने बताया। नित्यानंदादि सिंह द्वारा उत्तर लग गया, तहाँ सुनी लोग के है अनन्य बात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। तो वहाँ जब गए तो पूछना नहीं पड़ा नित्यानंद प्रभु को, आपस में लोग बात कर रहे थे कि अभी अभी आज एक सन्यासी यहाँ आया, अद्भुत सन्यासी था, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आया। एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ, आपस में लोग बात कर रहे थे कि आज एक अद्भुत सन्यासी आया जगन्नाथ जी को देखने के लिए, अद्भुत सन्यासी। एक तो छोटे उम्र का है, सन्यास गया है, बहुत सुंदर है, और आ करके यहाँ बेहोश हो गया, गिर गया, मूर्छित हैल चेतन नहाय शरीर सार्वभौम तैसे तारे लैया गेला घर। उस सन्यासी यहाँ आ करके मूर्छित हो गया, होश में नहीं था, तो उसी दशा में सार्वभौम भट्टाचार्य उसको उठाकर अपने घर ले गए, उठवा करके घर ले गए। बताए सुनी सबे जानी लन महाप्रभु कार्य है न कल आयला तह गोपीनाथ आचार्य। ये लोग बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने समझ लिया चैतन्य महाप्रभु में, वो लोग नहीं समझ रहे थे, किसी को पता नहीं था कि सन्यासी कहाँ का है, इसका बाप कौन है, माँ कौन है, कहाँ से आया है, कि नवदीप से आया है, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वो आते ही बेहोश हो गए थे। तो कौन पूछे ये सन्यासी तुम्हारा कहाँ आश्रम है, बनारस से आए हो कि हरिद्वार से आए हो, कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता था, बेहोश हो गए थे। तो लोग आपस में चकित होकर बात करते थे, एक सन्यासी आया कहीं का पता नहीं है क्या, वो बेहोश पड़ गया, सार्वभौम जी अपने घर ले गए। सार्वभौम तैसे तारा लैया गल घर, सुनी सबे जानी लेना महाप्रभु कार, सुन करके ये लोग समझ गए नित्यानंद प्रभु आदि कि ये चैतन्य महाप्रभु ने हेना काले आयल तहाँ गोपीनाथ आचार्य। उसी समय गोपीनाथ आचार्य आए। गोपीनाथ आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे और वे जानते थे कि ये कृष्ण हैं, ये भगवान हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात भगवान को उठवा कर ले गए हैं, उनके पास बैठे हैं। पर अभी कुतर्क उनके मन में चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और कई प्रकार की चेष्टा को देखने से, बेहोश होने की लीला को देखने से उनको लग रहा था मनुष्य है, मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में ये इतना सुदीप्त भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के कौन संबंधी लगते थे, साले या बहनोई लगते थे, अत्र ध्यान नहीं है, तो बिल्कुल निकट के संबंधी थे। वे उसी समय आए। नदिया निवासी विशारदेर जमाता, अच्छा विशारदेर जमाता महाप्रभु भक्त तिह प्रभु तत्व ज्ञाता। गोपीनाथ आचार्य नदिया में रहते थे, नदिया निवासी, और विशारदेर जमाता, विशारद विशारद जगन्नाथ, विशारद किसका नाम था है? किसके सर? नहीं नहीं विशारद दूसरे के लिए कहा सर, वो भट्टाचार्य के लिए विशारद शब्द प्रयोग है। अच्छा सर्वम भट्टाचार्य के पिताजी, अच्छा तो सर्वम भट्टाचार्य के ये बहनोई हुए जमाता, और सर ये जमाता मैं बोल रहा हूँ सर्वम भट्टाचार्य के पिताजी के जमाता ना, तो सर्वम जी क्या लग रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके साला लग रहा है ना, अब समझ में बात है। हाँ साला सियालक, इसलिए उन लोगों में आपस में गाली गलौज भी चलता था। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के तत्व के पूरे ज्ञाता थे गोपीनाथ आचार्य। नदिया निवासी विशारदर जमाता महाप्रभु भक्त तिह प्रभु तत्व ज्ञाता, तो भी आए मुकुंद सहित पूर्व अच्छे परिचय, मुकुंद देखिया तार है विस्मय, मुकुंद के साथ इनका परिचय था गोपीनाथ आचार्य का। तो मुकुंद को वहाँ जगन्नाथपुर में देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ। मुकुंद तहारे देखी कैल नमस्कार, तिहा आलंगिया पूछे प्रभु समाचार। मुकुंद ने प्रणाम किया गोपीनाथ आचार्य को, तो उन्होंने उनका आलिंगन करके सबसे पहले प्रभु के बारे में पूछा कि ये कहाँ हैं कैसे हैं चैतन्य महाप्रभु। तिहा आलिंगिया पूछे प्रभु समाचार, मुकुंद कहे प्रभु यहाँ हैला आगमन, हमी सब आशी आशी महाप्रभु सने। मुकुंद कहे प्रभु यहाँ हैला आगमने, हमी सब आशी आशी महाप्रभु सने। उन्होंने कहा कि वो तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हुए हैं और हम सब उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैलो नमस्कार, सबे मिली पूछे प्रभु वार्ता आर बार। नित्यानंद प्रभु को वहाँ देख करके मंदिर में उन्होंने समाचार पूछा, नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया गोपीनाथ आचार्य ने, क्योंकि पहले कहा गया है कि महाप्रभु के तत्व को ये जानते थे, ये भी जानते थे कि ये श्री बलराम जी हैं भगवान हैं। तो गोपीनाथ आचार्य ने उनको प्रणाम किया और सबे मिले पूछे प्रभु वार्ता आर बार, सब आपस में मिल करके चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछ रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं, और वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी तो यही पूछ रहे हैं कहाँ हैं कैसे हैं, वो लोग भी आए थे पीछे से, तो दोनों परस्पर समाचार पूछ रहे हैं। सबे मिले पूछे प्रभु वार्ता आर बार, मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास करिया, नीला चले आइला संगे आवास ले लाइए। मुकुंद ने कहा कि महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं और संन्यास ले करके नीलाचल आए हैं, तो हम सब उनके साथ आए हैं। आमा सभा छाड़ी आगे गेला दर्शन है, हमी सब पाछे आइला तार अन्वेषण है। वे हम सब लोगों को छोड़ करके शीघ्र गति से आगे आए भगवान का दर्शन करने, और हम लोग पीछे आए उनको खोजते हुए। अनन्य लोक मुखे से सब कथा सुनिल, सार्वभौम गृह प्रभु अनुमान कैल। तो लोगों के मुख से सुने हम लोग ऐसे ऐसे ये हैं वो हैं, तो अब अनुमान करते हैं कि वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर हैं। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन, सार्वभौम लैया गेला अपन भवन। विश्वनाथ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन में अविष्ट हो गए, बेहोश हो गए, अचेतन हो गए, उसी समय उस अचेतन अवस्था में ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको अपने घर ले, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गए। सार्वभौम लैया गला अपना नवा, कितना सरल शब्द है। तुम्हार मिलने अमार जबे हैल मन, दैवे सही क्षण पाइन तुम्हार दर्शन। नित्यानंद प्रभु कहते हैं या उनका दल कहता है कि आपसे मिलने के लिए जब हमारा मन हुआ, ये मुकुंद बोल रहे हैं, उसी क्षण भगवान ने आपका दर्शन करा दिया, आपसे भेंट हुई। चलो सबे जाई सार भौमे र भवन, प्रभु देखी पाछे करें ईश्वर दर्शन। तो चला जाए सार्वभौम जी के घर और भगवान को देख करके बाद में आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। लगता है भोग लग गया था तो कुछ भी, तो अथवा चैतन्य महाप्रभु को देखने की इतनी लालसा थी कि मुकुंद ने कहा या गोपीनाथ जी ने कहा कि चल पहले महाप्रभु जी का दर्शन करें, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें, बाद में भगवान का दर्शन करें। चिंता हो रही थी कि कैसे हैं, क्या हैं, बेहोश हैं, ऐसे ऐसे अचेतन अवस्था में उठा करके ले गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो भगवान के प्रति ममता उमड़ रही थी, स्नेह हो रहा, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं। तो इसलिए सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी है वास्तव में, ये बेहोश व्यक्ति पड़ा हुआ है, पहले उसके पास जाना, देखना है क्या कुछ करना होगा, चिकित्सा करनी होगी। चलो सबे जाई सार्वभौमे र भवन, प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। ये तो सुनी गोपीनाथ सभा कार्य लैया सार्वभौम घरे गेला हर्षित हैया। तो बहुत हर्षित है सुनकर के चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पर हैं, तो अच्छा से होंगे। तो सबको ले करके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। अन्य सबके लिए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर भी पूछना पड़ता कहाँ है क्या है, लेकिन गोपीनाथ आचार्य जानते थे। सार्वभौम स्थाने गिया प्रभु के देखी ला, प्रभु देखी आचार्य रे दुख हर्ष हर गए। तो वहाँ जा करके देखे चैतन्य महाप्रभु को, गोपीनाथ आचार्य को शोक दुख भी हुआ और हर्ष भी हुआ चैतन्य महाप्रभु को देखकर। दुख हुआ चैतन्य महाप्रभु की दशा देखकर, बेहोश पड़े हुए थे, यानी भगवान हो चाहे कोई हो, जो अचेतन पड़ा हुआ है तो देख करके दुख होगा ही, अथवा संन्यास ले करके देखे, सन्यासी वेश में देखे इसलिए भी दुख हुआ, और बेहोश देखे सुख इसलिए हुआ कि दर्शन हुआ भगवान का, भेंट हुई। प्रभु देखी आचार्य ने दुख हर्ष हैला, सार्वभौम जाना या सार्वभौम जाना या सवारे नीला अभ्यंतरे नित्यानंद गोसाई तेह कैला नमस्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य से सबका परिचय दिया गोपीनाथ आचार्य ने कि ये है ये है वो है, सबको भीतर ले गए भवन। तो नित्यानंद प्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रणाम किया, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति थे, एक तो राजगुरु थे, विद्वान थे, उम्र में भी उनसे अधिक थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद गोसाई रे तिह कैल नमस्कार, सभा सहित जथा जोग करिल मिलन, प्रभु देखे सभा रहिल दुख हर्ष मन। जथा जोग सब मिले चैतन्य महाप्रभु को देख कर सबको दुख भी हुआ सुख भी हुआ। सार्वभौम पठाइल सभा दर्शन करिते, चंदनेश्वर निज पुत्र दिला सबर साथ। सार्वभौम भट्टाचार्य सबको भेजे जाकर के भगवान का दर्शन कराइए, जगन्नाथ जी का दर्शन कराइए, और चंदनेश्वर के पुत्र थे उनको भेजा साथ में, तुम ले जाओ उनको दर्शन करा करके लाओ। चंदनेश्वर निज पुत्र दिल सवार साथ, जगन्नाथ देखी सवार हैला आनंद, भावे ते अविष्ट हैला प्रभु नित्यानंद। जगन्नाथ जी का दर्शन करके सबको बहुत आनंद आया और नित्यानंद प्रभु भाव में अविष्ट हो गए। तो कृष्ण को देख रहे थे, जगन्नाथ जी को अपने को भी देख रहे थे, बलराम जी के रूप में। बहुत आवेश हुआ। सबे मिली तारे तबे तारे सुस्थिर करी ल ईश्वर सेवक माला प्रसाद आनी दिल। सब मिल करके चैतन्य नित्यानंद प्रभु को धैर्य धराए, गावेश कम किए और भगवान चैतन्य भगवान जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वे लोग ला करके माला और प्रसाद दिए। प्रसाद पाइया सबे हैला आनंदित मने, पुनरअपि आयला सबे महाप्रभु स्थान। सबको प्रसादी माला और सबको प्रसाद मिला। तो प्रसादी माला और जगन्नाथ जी का भोजन प्रसाद पा करके सबको बहुत सुखी हुई। फिर वे लोग चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर। उच्च करी सबे करे नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हैला प्रभु चेतन। सब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के कीर्तन से धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु को होश हुआ और हरी हरी कह करके उठे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कीर्तन से ही कुछ लोगों की अचेतन अवस्था दूर हुई है। जो निम्न में थे तभी महामंत्र के उच्चारण से चेतन हुआ है, चेतना में आ रहे हैं। उच्च करी सबे करे नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हैला प्रभु चेतन। तृतीय प्रहर का मतलब है कि जब से बेहोश हुए थे वो सुनने करके, और 6 घंटा तो ऐसे बीता था, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता, तीसरे प्रहर में अर्थात 7-8 घंटे के बाद होश हुआ चैतन्य में। होश और होश होते ही हरी बोल कहे उच्च स्वर से, हुनकर करिया उठे हरी हरी बोली, आनंदे सार्वभौमे तारे लैला पद धूलि। हरी हरी कह करके उठे, अब तक तो बेहोश थे पड़े हुए थे, उठे और फिर नाचने लगे। तो प्रेम का विकार था, कोई शरीर में कोई रोग तो था नहीं, तो उनके चरण की धूलि को सार्वभौम भट्टाचार्य लगे मस्तक पर लगाने। सार्वभौम आनंदे सार्वभौम तारे लैल पद धूलि, सार्वभौम बोले शीघ्र कर हम ध्यान, मुई भिक्षा दीव आजि महाप्रसादान। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप शीघ्र मध्यान कीजिए, उनको स्नान कीजिए। वो तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से लाला गाज निकला हुआ था, फेन निकला हुआ था, आंखों से आंसू झर रहा था और सब धूलि में लोटे थे जहाँ तक। उनका मध्यान्ह कीजिए, मध्यान्ह का मतलब है दोपहर का स्नान और जो कृत्य है कीजिए। तो आप मध्यान्ह कृत कीजिए और आज मैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद आपको दूंगा, महाप्रसादान महाप्रसाद आनंद में। समुद्र स्नान करी प्रभु शीघ्र आईल, बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइल। सार्वभौम भट्टाचार्य जी मंदिर से बहुत प्रसाद मंगवाए, आज तक देखिए मंदिर से ही प्रसाद आता है कई जगह पर। महाप्रसाद मंदिर से मंगवाए और चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए। कहाँ स्नान करते थे? समुद्र में, रोज समुद्र में स्नान करते थे। जब भी जगन्नाथपुरी में रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करते थे। समुद्र स्नान करी प्रभु शीघ्र आई ल, बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइल। सुवर्ण थालिते अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे प्रभु करे न भोजन। सोने की थाली में उत्तम प्रसाद और व्यंजन, मतलब अन्न और व्यंजन, भात और सब्जी और सब परसा गया। सुवर्ण थाली थे, सोने की थाली में परसा। भक्तगण संग प्रभु करे न भोजन, भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु बैठे, अकेले कभी नहीं खाते थे, भक्तों के साथ बैठते थे, भक्तों को बैठाए साथ में खाने के लिए और भोजन करने लगे। लेकिन भोजन से पहले कैसे कैसे परिवेशन हो रहा था इसका वर्णन किया जा रहा है। सार्वभौम परिवेशन करे नयापने, प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजन। जो परोसने लगे सोने की थाली में हम प्रसाद बहुत बहुत, और मिठाई भी परोसने लगे और सब, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम जी हमको आप लफड़ा व्यंजन दीजिए। लफड़ा व्यंजन मतलब सब सब्जी मिली हुई, इसी को लफड़ा व्यंजन कहते हैं ना। लफड़ा हिंदी में भी ये शब्द प्रसिद्ध है। अगर कोई बहुत बात बना रहा हो, बहुत जाल कर रहा हो, तो उसको कहो क्या लफड़ा कर रहे हो, ठीक नहीं है। लफड़ा मतलब सब कुछ मिला हुआ है, सब सब सस्ता से सस्ता सब। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हमको लफड़ा व्यंजन दीजिए, इसका मतलब है कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं पुआ पूरी नहीं खाऊंगा, ये हमको लफड़ा व्यंजन दीजिए। पीठा पाना देह तुम्हें यहाँ सब आकार, और पीठा पाना ये सब मिठाइयों के नाम है, ये सब इन लोगों को दो, भक्तों को आप दीजिए मिठाई वगैरह सब पकवान, और हमको लफड़ा व्यंजन दीजिए। देखिए ये है रीति खिलाने, स्वयं भात या लफड़ा व्यंजन खा लेना चाहिए, और भक्तों को चाहिए देना कि वो खावे अच्छा अच्छा, यह नहीं कि हम ही सब अच्छा अच्छा खा लें और उन लोगों को लफड़ा व्यंजन बांटते। लफड़ा व्यंजन इसका इसमें खिचड़ी कह सकते हैं, खिचड़ी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमको खिचड़ी दे दीजिए लफड़ा व्यंजन, और भक्तों को ये मेवा मिष्ठान सब बांटे। पीठा पाना देह तुम यहाँ सब आकार, तभी भट्टाचार्य कहे जुड़ी दुई कर। तब सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़ करके चैतन्य महाप्रभु से कहे, जगन्नाथ कैसे करिया छे न भोजन, आज ही सब महाप्रसाद करा सदम। जगन्नाथ जी जैसे खाए हैं, जो चीज खाए हैं आप उसी तरह से खाइए, ये भगवान का प्रसाद है, इसमें आप पीठा पाना दी मत देखिए। जगन्नाथ जी जैसे खाए हैं वो खाइए, आज बहुत चीज खाए हैं जगन्नाथ जी, वहीं से मंगाया हूँ मैं, कुछ पकाया नहीं हूँ, इसलिए आप खाइए जगन्नाथ जी जैसे खाए हैं। आज सब महाप्रसाद करा आस्वादन, एतब वाली पीठा पाना सब खवाइला, भिक्षा कराइए आचमन कराइए। ये कह करके सब खवाए, पीठा पाना जो भी मिठाई वगैरह था वो सब खिलाए, पुआ सुआ जो बना था भगवान का प्रसाद था सब खिलाए, खिला करके आचमन कराए, भिक्षा कराई या आचमन कराई ला, आज्ञा मांगी गेला गोपीनाथ आचार्य लैया, आज्ञा मांगी गेला गोपीनाथ आचार्य लैया, प्रभु र निकट आइला भोजन करिया। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को बुलाया कि आप भी भोजन कर लीजिए। तो भोजन करने के बाद तब गोपीनाथ आचार्य को चैतन्य महाप्रभु पास ले गए, गोपीनाथ आचार्य उनको ले गए, प्रभु र निकटे आइला भोजन करिया, नम नारायण बलि नमस्कार कैला, कृष्ण मति रहु बलि गोसाई कैला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अब प्रणाम कर रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य को भोजन करा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो जानते थे, ये इनको आदत थी सन्यासी को देख करके नमो नारायण ऐसे बोलने की आदत। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायण कहा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण मति रस्तु। सार्वभौम भट्टाचार्य चकित हो गए, वैष्णव है, कृष्ण में मति रहे, ये आशीर्वाद तो वैष्णव लोग देते हैं। और सन्यासियों को प्रणाम किया जाता है, शंकराचार्य के सन्यासियों को, तो कहा जाता है कि नमो नारायण, वो भी नमो नारायण बोलते हैं, क्योंकि वो भी नारायण है, उनके जैसे वे भी नारायण है, नारायण के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। नमो नारायण, हम लोगों पर भी कभी कभी लोग चकित हो जाते हैं, कभी बोलते हैं नमो नारायण, तो हम कहते हरे कृष्ण, तो चकित होते हैं लोग, नमो नारायण जय श्री राधे। चैतन्य महाप्रभु के एक सन्यासी जान करके सार्वभौम भट्टाचार्य जी प्रणाम किए नमो नारायण कह करके, हे नारायण आपको प्रणाम। सन्यासी नारायण हो गए। देखिए ये प्रणाम की रीति भी बहुत बुरी है इस संसार में। ऐसे तो ठीक है भगवान का नाम आ रहा है नमो नारायण, लेकिन वास्तव में नारायण को प्रणाम दूसरे तरह से किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि नमो नारायण दासाय तो ठीक है, नारायण के दास को प्रणाम, लेकिन वो नारायण नमो नारायण उधर से भी नमो नारायण, जो कुछ भी हो वास्तव में प्रणाम के विषय नारायण ही है, जीव नहीं है। भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए, जीव के हृदय में ही भगवान है, यही कहकर प्रणाम किया जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के चकित होने का कारण हो गया कि जब इन्होंने कहा कृष्णे मति रस्तु, प्रसाद उसाद पाने के बाद पवाने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम कर लिए तब सार्वभौम भट्टाचार्य गए और प्रणाम किए गोपीनाथ आचार्य के साथ। आज्ञा मांगी गेला गोपीनाथ आचार्य लैया, प्रभु र निकट आयला भोजन करिया, नमः नारायण बलि नमस्कार कैला, कृष्णे मति रहु बलि गोसाई कहिला। गोसाई गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को गोस्वामी का स्वामी भगवान ने कहा। सुनी सार्वभौम मने करिला विचार करिला, वैष्णव सन्यासी यहाँ वचन जानी लो। जब कृष्ण मतिरस्तु सुना सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने तो समझ गए कि तू वैष्णव सन्यासी, से उनको प्रसन्नता ही हुई इसे, लेकिन तुरंत भेद समझ गए। इन बोली से आदमी समझा जाता है। साधुओं के समाज में कहते हैं कि 12 वर्ष रहे साधु के टोली तब समझे एक बोली। कोई व्यक्ति 12 साल साधुओं के संग रहता है तब एक बोली को समझता है, क्या बोल रहा है कैसे कह रहा है। तो नमः नारायण उत्तर न देकर के जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्णे मति रस्तु, तो ये समझ गए कि वचन से तो वैष्णव सन्यासी यहाँ वचने जानी लो, वचन से समझ गए। गोपीनाथ आचार्य रे कहे सार्वभौम गोसाई जानते चाहिए कहाँ पूर्वाश्रम। अब देखिए तो साले और पहनोई में बातचीत हो रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा गोपीनाथ आचार्य से कि इनका पूर्वाश्रम कहाँ पर है, कहाँ के हैं, क्या नाम था, और पूर्वाश्रम से या तो ब्रह्मचर्य आश्रम पूछ रहे या गृहस्थ आश्रम, इनका पूर्वाश्रम क्या है। अभी तो संन्यास आश्रम हो गया है, सार्वभौम भट्टाचार्य पूछ रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य रे कहे सार्वभौम, सार्वभौम ने कहा गोपीनाथ आचार्य से गोसाई जानते चाहिए कहाँ पूर्वाश्रम, इनका पूर्वाश्रम कहाँ था, कहाँ इनका जन्म हुआ है, कहाँ के हैं। साधुओं में ऐसा ही पूछा जाता है पूर्वाश्रम, ऐसे नहीं कहते हैं कि पहले मैं गृहस्थ था, पूर्वाश्रम में मेरा यह नाम था, गृहस्थ आश्रम नहीं कहते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे इनका पूर्व आश्रम बिफोर संन्यास, संन्यास से पहले ये पूर्व आश्रम में होंगे, संन्यास लेने से पहले ये कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, इसका मतलब इस तरह से साधुओं में पूछा जाता है। आप कहाँ से आए हैं ऐसे नहीं पूछते हैं, कहाँ से आसन आया है, कहाँ से श्री चरण आया ऐसे पूछते हैं। उसी शालीनता से सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं गोपीनाथ आचार्य से। गोपीनाथ आचार्य कहे नवद्वीपे घर, गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि नवद्वीप में इनका घर है। जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर, जगन्नाथ में जिनका घर, नवद्वीप में जिनका घर है, एक पंडित है ब्राह्मण जिनका नाम है जगन्नाथ, और जगन्नाथ मिश्र, और उनका पदवी है पुरंदर, मिश्र पुरंदर।
विश्वम्भर नाम इहार तार यहो पुत्र नीलाम्बर चक्रवर्ती है न दौहित।
इनका नाम है विश्वम्भर, ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। ये नीलाम्बर चक्रवर्ती के दौहित हैं, पुत्री के पुत्र हैं, मतलब नीलाम्बर चक्रवर्ती उनके नाना है। नीलाम्बर चक्रवर्ती बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे। अच्छा, नीलाम्बर चक्रवर्ती के दौहित हैं, दुहिता के पुत्र हैं, मतलब पुत्री के पुत्र। तो जगन्नाथ मिश्र पिता का नाम बताया गया, गोपीनाथ आचार्य ने बताया, नवदीप बताया घर है, और नीलाम्बर चक्रवर्ती नाना है। सार्वभौम कहे नीलाम्बर चक्रवर्ती विशारदरे समाध्यायी यही तार ख्याति। अच्छा, नीलाम्बर चक्रवर्ती तो उनके बारे में ख्याति है कि ये विशारद के समाध्यायी थे, तो सहपाठी एक साथ पढ़े थे दोनों, नीलाम्बर चक्रवर्ती और विशारद, दोनों एक साथ पढ़े थे।
गुरु भाई थे, स्कूल में पढ़े थे। मिश्र पुरंदर तार मान्य हिन जानी, मिश्र पुरंदर तार मान्य हिन जानी, पिता र संबंध दोहा पूज्य करी मानी। मिश्र पुरंदर तार मान्य हिन जानी, मिश्र पुरंदर जी विशारद के मान्य व्यक्ति पूज्य मानते, तो इस कारण से मैं भी उन्हें पूज्य मानता। पिता रा संबंध है सार्वभौम हृष्ट हैला, प्रीत हैया गोसाई रे कहते लगिला। तो पिता के संबंध से सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत प्रसन्नता है, तो बिल्कुल परिचित है, परिवार है, ये है वो है, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत खुशी हुई और प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे, सहज ही पूज्य तुम्हें आर्य तो संन्यास अतएव हम तुम्हार आमी निज दास।
सार्वभौम भट्टाचार्य किस तरह समर्पण कर रहे हैं, कहते हैं कि
सहज ही पूज्य तुम्हें,
आप तो स्वाभाविक ही परम पूज्य है, और आर्य तो संन्यास, और उस पर भी आप सन्यासी हैं। उसे कहा जाता है कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यास। सभी मनुष्यों का गुरु होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के भी गुरु सन्यासी हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आप तो सहज ही पूज्य हैं, और उस पर भी आप सन्यास लिए हैं, इसलिए मैं आपका अपना दास हूँ। आप ऐसे यही समझिए कि मैं आपका कृत दास हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। आप अपने घर में ही आए हुए हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे ये सौभाग्य दीजिए।
सहज ही पूज्य तुम्हें आर्य तो संन्यास अतएव हम तुम्हार आमी निज दास। सुनी महाप्रभुर कैला श्री विष्णु स्मरण भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन।
जब ये सुने चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रशंसा और सार्वभौम भट्टाचार्य को समर्पण कर रहे मैं आपका दास हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जैसे सुनना नहीं चाहते, और भगवान का नाम बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो अपनी प्रशंसा यदि कोई सुनता है तो अपना गला उलेत रहा है, अपने आप आत्मघात कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनना चाहते थे, ये भी स्वाभाविक बोल रहे थे भट्टाचार्य जी, स्वाभाविक।
फिर भट्टाचार्य कहते हैं, तुम्ही जगत गुरु सर्वलोक हितकर्ता। नहीं, भट्टाचार्य से
सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं,
भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्ही जगत गुरु सर्वलोक हितकर्ता, वेदांत तो पढ़ाओ सन्यासीर उपकर्ता।
आप तो वास्तव में जगत गुरु हैं,
सारे लोगों का हित करते हैं। हमने सुना है कि आप वेदांत पढ़ाते हैं, तो वेदांत के द्वारा सन्यासी के तो आप सबसे बड़े उपकारी, क्योंकि सन्यासी को वेदांत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, स्वाभाविक। लेकिन चैतन्य में अपन स्वयं भूमिका बना रहे हैं कि ये वेदांत पढ़ाना चालू करे स्नेह के कारण। ये बच्चा 24 वर्ष में ही संन्यास ले लिया, कैसे इंद्रियों को रोकेगा विषयों से, कैसे इंद्रिय जय करेगा, कैसे ब्रह्म का चिंतन करेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य को स्नेह उमड़ने लगा कि इस लड़के को वेदांत पढ़ाना चाहिए, पर अब तक वो ये नहीं समझ पाए कि साक्षात ईश्वर है, भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं, सब लोगों के हितकर्ता हैं, आप वेदांत पढ़ा पढ़ा करके सन्यासियों को उपकारी। आप स्वयं गृहस्थ हैं लेकिन वेदांत पढ़ाते हैं और सन्यासियों का उपकार कर रहे हैं, इसका मतलब सन्यासियों के भी आप गुरु हैं। आमी बालक सन्यासी भालमंद नहीं जानी, तुम्हारा आश्रय नील गुरु करिमानी। आप देख ही रहे हैं, मैं 24-25 वर्ष का एक लड़का हूँ, बालक हुआ और पता नहीं कैसे संन्यास ले लिया पागलपन में ही संन्यास ले लिया, कहने का आशय है। तो मैं बालक बिना पढ़ा लिखा संन्यास ले लिया, इसलिए भालमंद नहीं जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस बात में मेरा हित है अहित है मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तुम्हारा आश्रय नीला, मैं आपके शरण में आया हूँ, आपका आश्रय लिया हूँ, निज गुरु करी माने, और मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। तुम्हार संग लागी मोर यहाँ आगमन, सर्व प्रकार करीब हमारा पालन, आपके संग के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जगन्नाथपुरी में आपके आपका संग पाने के लिए मैं आया हूँ, और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि सब प्रकार से मेरी रक्षा कीजिएगा, मेरा पालन कीजिएगा, मैं आपका शिष्य हूँ, पुत्र जैसा हूँ, तो आप हम पर कृपा रखिएगा। आज जे हैला हमार बड़ी विपत्ति, तहा है तो करला तुम्हें हमार अव्याहत। आज मैं कितनी विपत्ति में पड़ गया था, लगभग मैं मर चुका था, अगर आप नहीं मंदिर में आए होते तो हमारी पिटाई भी खूब हुई होती। वैसे ही मैं बेहोश था, पीटने के बाद मेरा शरीर छूट गया होता है, और भट्टाचार्य को ये संदेह में डाल गए। आज हम पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी थी, मंदिर में कहीं देह छूट गया होता, कुछ हुआ होता, और उसके पहले तो सारे पंडे आकर के मारने के लिए दौड़े थे। तो आपने उस महाविपत्ति से मुझे बचाया, इसी तरह से हमें अज्ञान से माया से बचाते रहिएगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। आज जे हैला हमार बड़ी विपत्ति, तहा है ते खरला तुम्हें हमार अव्याहती। तब भट्टाचार्य कहते हैं, भट्ट कहे एक कले तुम्हें ना जाई हो दर्शन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर इतना स्नेह उमड़ा, तो कहते हैं अकेले मत कभी जाना मंदिर दर्शन करने। तो मान लीजिए ऐसा बेहोश होगा और फिर वो मारने लगे तब क्या होगा। तो अकेले मत जाना दर्शन करने जगन्नाथ जी के, हमारे साथ चलना चाहे और कोई किसी के साथ जाना, लेकिन अकेले मत दर्शन करना। चैतन्य महाप्रभु जो चाहते हैं किसे कराना वो करा लेते हैं, उनके अंदर स्नेह उमड़वा दिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य एक तो पारिवारिक संबंध था, ढंग था, इनके पिताजी पढ़े थे, इनके किसके साथ पढ़े थे जो भी हो, तो एक तो पारिवारिक संबंध और साथी मित्र का संबंध, और फिर सन्यासी इतना सुंदर, कितना मधुर चैतन्य महाप्रभु बोले कि हमारा हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा पालन कीजिएगा, मैं तो आपकी ही शरण में आया हूँ, यहाँ पर आपसे भेंट करने के लिए ही मैं यहाँ आया। ये चैतन्य महाप्रभु की बात झूठी नहीं है, मन में क्या क्या सोच करके जगन्नाथपुरी आए हैं, उसमें से एक कारण है सार्वभौम भट्टाचार्य, उन पर कृपा करने के लिए आए। लेकिन कह रहे हैं कि मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ, हमारा पालन कीजिए। ये सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं एकले तुम्हें ना जाइयो दर्शन में, अकेले दर्शन करने नहीं जाना, आमार संगे जावे कि वह आमार लोक संगे, मेरे साथ जाना जगना जी का दर्शन करने तो हमारे कोई आदमी है हम जिसको कहेंगे उसके साथ जाना, मेरे साथ जाना। प्रभु कहे मंदिर भीतरे न जाइब, चैतन्य महाप्रभु कहते मैं मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा, मंदिर के भीतर मतलब जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गरुण पास रही दर्शन करीब, मैं गरुण स्तंभ के पास रह करके दर्शन करूँगा, भीतर नहीं जाऊंगा, हमको भी डर लग रहा है कि पंडे हमको मारेंगे कोई गलती हो जाएगी, मान लीजिए हमको आवेश आवे मैं गिर पड़ो या रोने लगूँ तो लोग मारेंगे, इसलिए हम गरुण स्तंभ के पास रहे, गरुण जी के पास रहेंगे, गरुण जी के पास रहकर हम दर्शन करेंगे। गोपीनाथ आचार्य के कहे सार्वभौम तुम्हें गोसाई रे लैया कराई हो दर्शन, तो गोपीनाथ आचार्य के कहे सार्वभौम, गोपीनाथ आचार्य से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आचार्य गोपीनाथ जी आप इनको ले जाकर दर्शन कराइएगा, इनकी देख रेख रखिएगा। और गोपीनाथ आचार्य जो जानते हैं कि साक्षात ईश्वर है, जो जगन्नाथ जो आल्टर पर है वही यही है उनको सब कुछ ज्ञात था, लेकिन वे सुन रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य स्नेह से कहे कि आप इनके साथ रहिएगा दर्शन कराइएगा, कोई कुछ करने ना पाए, इस बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। गोपीनाथ आचार्य की कहे सार्वभौम तुम्हें गोसाई लैया कराई है दर्शन, आमर मातृ स्वसा गृह निर्जन स्थान तहा बासा देह तब करे सर्व समाधान। आप ये काम कीजिए कि अमर मातृ स्वसा गृह मेरे माँ की बहन मेरे मौसी के घर में इनको निर्जन स्थान पर रखिएगा, किनके घर में गंभीरा किनका घर है काशी मिश्र, काशी मिश्र काशी मिश्र की पत्नी उनकी मौसी थी सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र जी मौसा हुए तो उनके घर में वहाँ निर्जन स्थान है तो वहाँ इनको रखिएगा। हमार मातृ स्वसा गृह निर्जन स्थान तहाँ बासा देह तबे सर्व समाधान, तो वहाँ बास देना वहाँ तब सब कुछ समाधान होगा। ठीक, गोपीनाथ प्रभु लैया तहाँ बासा दिल जल पात्र आदि सर्व समाधान करो, तो गोपीनाथ ले गए काशी मिश्र के यहाँ तो वहाँ पर उनको जल पात्र आदि सब दिए, चैतन्य महाप्रभु जल पात्र भी लेकर नहीं आ रहे, दोनों हाथ ऊपर रखते थे कहाँ फूटा वो जलपात्र और कहाँ टूटा त्रिदंडेश उनको क्या पता, तो नया नया पात्र दिए जलपात्र, जलपात्र आदि सर्व समाधान कर सारी व्यवस्था किए। आर दिन गोपीनाथ प्रभु स्थान गया सज्जोत्थान दर्शन कराई ले, एक दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए और ले जा करके जगन्नाथ जी का दर्शन कराए, सज्जोत्थान मतलब दोपहर के बाद, दोपहर के बाद जब भगवान उत्थान करते हैं देखते हैं तो उसका दर्शन कराए। मुकुंद दत्त आयला सार्वभौम स्थाने सार्वभौम किछु तारे बलिला वचन, मुकुंद दत्त आए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कुछ कहा, प्रकृति विनित सन्यासी देखते सुंदर, ये सन्यासी लड़का कितना विनीत है, बेचारे स्नेह से बोल रहे हैं बहुत सुंदर लड़का है और स्वभाव से कितना विनय कितना मधुर शब्द बोलता है और देखते सुंदर बहुत सुंदर है, आमार बहुत प्रीति बाढ़े इहर ऊपर, आमार बहुत प्रीति
या इसके ऊपर हमारा बहुत प्रेम बढ़ रहा है, स्नेह बढ़ रहा है।
कौन संप्रदाय संन्यास करे छन ग्रहण किवा नाम इहार सुनते है मन, किस संप्रदाय में संन्यास लिया है और संन्यास के बाद इसका क्या नाम है, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। ये मुकुंद से पूछ रहे थे और वहीं पर गोपीनाथ आचार्य भी थे। गोपीनाथ कहे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, गोपीनाथ ने कहा इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण के बारे में चेतना देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण चैतन्य। इनको नाम दिया गया है केशव भारती जी ने दिया है, गुरु इहर केशव भारती महाधन, और परम सौभाग्यवान केशव भारती जी इनके गुरु हैं। सार्वभौम कहे इहर नाम सर्वोत्तम, भारतीय संप्रदाय है न मध्यम, इनका नाम तो बहुत उत्तम है, कृष्ण चैतन्य बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ये भारतीय संप्रदाय तो ये तो मिडिल क्लास का संन्यास होता है, बहुत उच्च कोटि का संन्यास नहीं है। अब ये पढ़े होंगे सब जानते होंगे तो कह रहे हैं, इतना सुनते हैं गोपीनाथ जी कहते हैं। गोपीनाथ कहे यार नहीं बाह्य अपेक्षा, अतएव बड़ संप्रदाय ते उपेक्षा, इनको बाह्य अपेक्षा नहीं है इसीलिए उन्होंने बड़े संप्रदाय की अवहेलना किया, इनको संन्यास लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है साक्षात भगवान है, गोपीनाथ आचार्य ने कहा। भट्टाचार्य कहे यार प्रौढ़ है जवान केमने संन्यास धर्म है वे रक्षण, तो भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य तो स्नेह से घिरे हुए थे, वो कहते हैं लेकिन यार प्रौढ़ है जवान, अभी ये युवक है, जवानी में इंद्रियों में भोगों की बहुत अपेक्षा होती है, सारे आँख कान नाक सारे विषयों की तरफ होते हैं, तो ये कैसे रक्षा करेगा संन्यास की, हम लोगों का धर्म है ये सब सोचना। इसके बाद तब गोपीनाथ बोलेंगे कि तुम वेदांत पढ़ने से बिल्कुल डल माइंडेड हो गए, उनके संन्यास धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये कौन है पहले ये जानने का प्रयास करो। सार्वभौम भट्टाचार्य को डांटना चालू किए, सार्वभौम भट्टाचार्य स्नेह से कह रहे हैं कि भट्टाचार्य कहे यार प्रौढ़ है जौवन, बिल्कुल जौवन में प्रवेश कर रहा है लड़का, तो किमने संन्यास धर्म है वे रक्षा, संन्यास की कैसे रक्षा करेगा। निरंतर यह के वेदांत सुनाई, बह मेरे मन में तो यही है कि मैं इस बच्चे को निरंतर वेदांत सुनाऊंगा, जगत की असारता, भोगों की असारता और अपने स्वरूप जीव ब्रह्म है, इन सब बातों को इसको बताऊंगा, मेरी तो यही इच्छा है, इसके संन्यास की रक्षा में करूँगा। और भगवान ने कह भी दिया था ना कि आप हमारा पालन कीजिए, हमको माया से बचाइए, हमको ये कीजिए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाक्य के अनुसार सार्वभौम भट्टाचार्य में स्नेह और उमड़ रहा था, उनकी भगवत्ता पर विचार नहीं कर रहे थे कि ये भगवान है ये है, स्नेह से बोल रहे थे। भट्टाचार्य कहे यार प्रौढ़ जौवन केमने संन्यास धर्म है वे रक्षण, निरंतर यह के वेदांत सुनाई, वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराई, मैं इस बच्चे को निरंतर वेदांत पढ़ाऊंगा सुनाऊंगा और इसको वैराग्य मार्ग में और वो भी अद्वैत मार्ग में मैं प्रवेश कराऊंगा। अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराऊंगा इसको। कहा यदि पुनरअपि जोग पट दिया संस्कार करिए उत्तम संप्रदाय निया, इसको फिर से योग पट दे करके फिर से इसको संन्यास दे करके और उत्तम संप्रदाय में लेना चाहता हूँ। देखिए क्या अज्ञान है भगवान के, इसको ऐसी वो बहुत स्नेह से बोल रहे हैं, ये भक्ति ही है वास्तव में, जैसे माँ यशोदा हित चाहती है या वसुदेव भी चाहते हैं भगवान का नंद बाबा चार, वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में स्नेह वात्सल्य भाव उमड़ रहा था, कह रहे थे इसको मैं बल्कि पुनः जोगपट दे करके, जोगपट सन्यासियों के द्वारा नए तरह से वस्त्र धारण और मंत्र देना, इसको योग पठ कहते हैं। इसको फिर से योग पठ दे करके और संस्कार करके उत्तम संप्रदाय में आनी मैं लाना चाहता हूँ। सुनी गोपीनाथ मुकुंद दोहे दुखी है। गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दोनों सुनकर बहुत दुखित हुए। गोपीनाथ आचार्य किसी कहते लागिल और गोपीनाथ आचार्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहने लगे भट्टाचार्य तुम्ही यार ना जान महिमा भगवत्ता लक्षण इहा तीमा। सार्वभौम भट्टाचार्य आप कुछ इनके बारे में नहीं जानते, एक अक्षर नहीं जानते हैं। भगवत्ता के जो सारे लक्षण हैं इनमें आप देख रहे हैं कि नहीं? भगवान के जो भी स्वरूप लक्षण आदि शास्त्रों में बताए गए हैं इनमें पूरा पूरा दिखाई देता है, पूरा पूरा ये साक्षात भगवान है। ताहते विख्यात ही हो परम ईश्वर अज्ञ स्थाने किचु नहे विज्ञेर गोचर। इनके विषय में सब कुछ प्रसिद्ध है इन लक्षणों से कि ये साक्षात परम ईश्वर है, लेकिन अज्ञ लोग इसे नहीं जान सकते हैं, ये केवल विज्ञ व्यक्ति समझ सकता है। अज्ञ स्थाने किचु नहे विज्ञेर गोचर, जो अज्ञ व्यक्ति होता है वह कुछ नहीं जानता है, जो विज्ञ होता है वही जानता है। ये साक्षात भगवान है और भगवान के अब संन्यास धर्म की तुम रक्षा करने चले हो, इस तरह का विचार छोड़ो। ये भगवान हैं, साक्षात कृष्ण हैं, इनकी भक्ति करो, जीवन सफल करो, ये वेदांत वेदांत पढ़ाने की मत सोचो। उनका कहने का आशय ये था। विद्वान लोग जो बात समझते हैं अज्ञ लोग नहीं समझते। शिष्य गण कहे ईश्वर कह कौन प्रमाणे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के कुछ शिष्य लोग बैठे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो चुपचाप रहे। वो शिष्यों ने कहा आप किस प्रमाण से इनको ईश्वर कह रहे हैं, सब अद्वैत मार्गी थे, पूरा पूरा जानते नहीं थे, गुरु कुछ कुछ संदेह में है। सार्वभौम भट्टाचार्य संदेह में है, गोपीनाथ ने कहा कि ये गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि ये साक्षात भगवान है, सारे लक्षण से पता चल रहा है। तो शिष्यों ने तर्क किया, शिष्य गण कहे ईश्वर कह कौन प्रमाणे, आचार्य कहे विज्ञ मत ईश्वर अलग लक्षण है। उन्होंने तर्क किया शिष्यों ने, किस प्रमाण से किस शास्त्र से आप कह रहे हैं कि ये भगवान है ये ईश्वर है। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि विज्ञ मत ईश्वर लक्षण है। विद्वान लोग शास्त्रों में या लोक में भी जो विज्ञ हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वे लोग जो कहते हैं ये सबसे बड़ा प्रमाण है। शिष्य गण कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने नहीं ईश्वर ज्ञाने। शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, अनुमान से पता चलता है, अनुमान से आकलन करने से कि यह व्यक्ति ईश्वर है। अनुमान मान का अर्थ होता है प्रमाण, किसी प्रमाण से पता चलता है कि ईश्वर है अनुमान से। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं अनुमान से ईश्वर का ज्ञान कभी नहीं होता है, विज्ञ मत से ईश्वर का ज्ञान होता है। जो जानते हैं ठीक ठीक शास्त्रों को या भगवान के लक्षण को जो जानते हैं, विज्ञ का अर्थ है कि भगवान का शरीर कैसा होता है, उनकी भुजा कैसी लंबी होती है, उनकी आँख कैसी होती है, चरण में चिन्ह होते हैं, हाथ में चिन्ह होता है, उनका वक्षस्थल, उनका कंठ, उनका सब कुछ, ये जिसको जानकारी है शास्त्रों की वो व्यक्ति समझ सकता है कि ये व्यक्ति ईश्वर है या नहीं है। अनुमान से क्या समझा जा सकता है। आचार्य कहे अनुमान नहीं ईश्वर ज्ञान है, ईश्वर एर कृपालेश है तो जहार सही तो ईश्वर तत्व जाने वाले पारे। ईश्वर एर कृपालेश है तो जहार है सही तो ईश्वर तत्व जाने वाले पारे। जिस पर भगवान की कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह है, वही व्यक्ति जान सकता है कि ईश्वर कैसा है कौन है। अब कहते हैं ये भागवत का एक श्लोक कोट करके, अथा पिते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेसो अनुगृहीत वही जानाति तत्व भगवन महिम न चन्न एको विचिरन विचिन्वन। जिस व्यक्ति पर भगवान कृष्ण की दया होती है, स्नेह होता है, वही व्यक्ति कृष्ण को ठीक से जानता है अन्यथा अपने प्रयास से उनको खोजने वाला अपने अनुमान से नहीं पा पाता। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य को फटकारते हैं, यद्यपि जगद गुरु तुम्हें शास्त्र ज्ञानवान पृथ्वी ते नहीं पंडित तुम्हारा समान। मैं मानता हूँ सार्वभौम कि तुम जगत गुरु हो और शास्त्र ज्ञानवान हो, इस पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे समान पंडित कोई नहीं है, ये मैं मानता हूँ। पृथ्वी ते नहीं पंडित तुम्हारा समान, ईश्वर है न कृपालेश नहीं को तुम्हारे अतव ईश्वर तत्व तो ना पार जानित। तुम शास्त्र जानते हो, पृथ्वी में विख्यात पंडित हो, लेकिन भगवान की कृपा तुम पर अब तक नहीं हुई है, इसलिए तुम भगवान को बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारा नहीं का दोष शास्त्र यही कहे, पंडित तादे ईश्वर तत्व कभू ज्ञान ना, तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुमको जो पंडिताई का अभिमान है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो शास्त्रज्ञ हो, इसके कारण तुम पर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है। तुम पर ईश्वर की कृपा है ही नहीं, केवल पंडित भर हो, पढ़े लिखे हो, ईश्वर की कृपा नहीं है। इतना सुन करके सार्वभौम तो चकित हो गए और पूछने लगे। सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधानी, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि जरा सोच कर बोलिए, सावधानी से बोलिए, क्या है नरगर बोल रहे हैं आप, एक जीव को ईश्वर बना रहे हैं और हमको आप मूर्ख बना रहे हैं, प्रकाश मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये नहीं जानता आप इस मनुष्य को कैसे ईश्वर कह रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि ये नहीं जानता है, तो सावधानी से बोलिए। उन्होंने तो कह दिया कि तुम्हारी बुद्धि चौपट है, केवल पढ़े लिखे हो, लेकिन भगवान का जानना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधान है तुम्हारे ईश्वर कृपा इथे की प्रमाण है, जरा सोच कर बोलिए। मैं अच्छा पूछता हूँ, आपको भगवान की कृपा मिली हुई है, इसका क्या प्रमाण है? आपको भगवान की कृपा मिली हुई है और इसलिए भगवान को आप ठीक ठीक जानते हैं, जो लक्षणों को जानते, ये कैसे माना जाए कि आप पर भगवान की कृपा है? ठीक है, हम पर कृपा नहीं है, मैं मानता हूँ आप पर कृपा हो गई है, इसका क्या प्रमाण है? आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपा ते प्रमाण। किसी वस्तु को खास करके भगवान को ठीक ठीक जान लेना वस्तु तत्व ज्ञान है कृपा ते प्रमाण। किसी वस्तु को ठीक ठीक जान लेता है, मैंने भगवान को अगर कोई जान लिया तो जान लिया यही प्रमाण है कि भगवान की कृपा है उसमें, तो अब सार्वभौम उछल गए। तो इसका मतलब आप सब जानते हैं। उन्होंने सीधा उत्तर दिया कि मैं ठीक ठीक चैतन्य महाप्रभु को जानता हूँ, ये साक्षात भगवान है, तो ज्ञान बता रहा है कि हम पर चैतन्य महाप्रभु कृपा है। ऐसे उन्होंने कहा, उसके द्वारा अनुमान किया जाता है कि हम पर भगवान की कृपा है, मैं ठीक ठीक जानता हूँ और तुम पढ़ा लिखा होकर कुछ नहीं जानते हो, इसलिए अनुमान किया जाता है तुम पर कृपा नहीं है, हम पर कृपा है। अच्छा क्या क्या कैसे माना जाए कि आपको ज्ञान है? तब तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में गोपीनाथ आचार्य, यहाँ शरीर सब ईश्वर लक्षण, इनके शरीर में ईश्वर का सारा लक्षण है, देख रहे हैं ना आप, तो पढ़े लिखे शास्त्र को पढ़े लिखे हैं, भगवान के शरीर में जो वर्णन लिखा गया है शास्त्रों में, उनकी आजान और लंबित भुजा होती है, आंखें कमल जैसी होती हैं, चरण में यह चिन्ह होता है, उनका वक्षस्थल, उनकी भुजा है, उनका नाभि कमर सब जैसा होता है, सब वर्णन है ना, सब लक्षण है ना, यहाँ शरीर सब ईश्वर लक्षण। महाप्रेम आवेश तुम्हें पाया से दर्शन, और महाप्रेम के समय में क्या क्या विकार है आपने साक्षात देखा है ना, देखा है ना, वो स्वयं बताए थे कि हमने देखा है। तबु तो ईश्वर ज्ञान ना है तुम्हार, ईश्वर एवं माया यही बलि व्यवहार, माया यही बलि व्यवहार।
डायरेक्ट आंख से देख करके सारा लक्षण पढ़े हो शास्त्रों में, और यहाँ सब लक्षण देखे हो, प्रेम का विकार भी देखे, फिर भी तुमको भगवान का ज्ञान नहीं हो रहा। भगवान आंख के सामने आए, यहाँ के सामने तुम्हारे घर में आए हुए हैं, लेकिन तुमको ज्ञान ही नहीं हो रहा है। ईश्वर का क्या लक्षण है मालूम है ना तुमको? तो हाँ, उन कहे कि हाँ ये लक्षण, ये लक्षण। वो कौन सा ऐसा लक्षण है जो इनमें नहीं है, जरा बताओ तो। भगवान विष्णु के या कृष्ण के शरीर में जो लक्षण लिखा गया है, और प्रेम का विकार आप स्वयं देख ही चुके हैं, वो शरीर भी देख रहा है, वो सुंदरता देख रहा है, प्रेम का महाविकार भी देख रहा है, फिर भी आपको ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। तो इससे यही अनुमान होता है कि कृपा नहीं है आप पर, और वो कृपा इसलिए नहीं है कि आपको अहंकार है कि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और आप इनके संन्यास की रक्षा करेंगे। ऐसा बोलिएगा मत कि इनके संन्यास की रक्षा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तब तो ईश्वर ज्ञान न है तुम्हार, ईश्वर माया यही बलि भरे, सब भगवान की माया है। भगवान की माया आपको भगवान का ज्ञान होने नहीं दे रही। देख ही लेना देखे तारे बहिर्मुख जान, सुनी हसी सौर भाषण बल, देख करके पश्चन नपी न पश्यति। इससे ज्यादा साक्षात क्या आएगा आपके सामने ईश्वर का लक्षण? कहीं सुने कहीं देखे हो मनुष्य समाज में किसी मनुष्य ने ऐसा लक्षण पाया हो? ईश्वर का लक्षण है, जो भी शरीर चैतन्य महाप्रभु का है श्री विग्रह, उसमें जो लक्षण है सब ईश्वर का लक्षण है। विपश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी अंधे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, केवल शास्त्र के श्लोक और पन्ने को देखते हो, तुमको और ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। इतना सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य हंसने लगे, हंस करके कहे, हंसी सुनी हंसी सार्वभौम बोली लचन, इष्ट गोष्ठी विचारे करी ना करी रोष। आप ये समझे हम लोग इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भी विचार ये है, आप ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत विरोध कर रहा हूँ। एक मित्रों की जो गोष्ठी होती है, किसी चीज पर विचार करते हैं, तो हम इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं। इष्ट का अर्थ होता है मित्र, जैसे कहते हैं इष्ट मित्रों के साथ निमंत्रण में आई, तो इष्ट गोष्ठी मतलब मित्रों की गोष्ठी होती है। लेकिन आजकल इष्ट गोष्ठी में ही झगड़ा होने लगता है। इष्ट गोष्ठी है तो बहुत प्रेम से बात करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हम इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, भाई आप इतना गुस्सा में क्यों हो जाते हैं? आप जो भी बोल रहे हैं तो बहुत क्रोध में बोल रहे हैं। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है और भगवान के विषय में कुछ उपेक्षा के वचन कहा जाए, इसके संन्यास की रक्षा करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा, ये कौन सुन सकता है? ये कितना विस्मय से बोल रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य को सहन नहीं हो रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये विचार किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, क्रोध मत कीजिए। शास्त्र दृष्टि कही किछु ना लई है दोस्त, मैं शास्त्र दृष्टि से बोल रहा हूँ, शास्त्र जैसा मैं पढ़ा हूँ, आप सुनिए विचार करेंगे। महाभागवत है चैतन्य गोसाई, मैं इतना मान सकता हूँ कि ये चैतन्य महाप्रभु महाभागवत है, परम श्रेष्ठ कृष्ण भक्त है। यही कले काले विष्णु अवतार नहीं, क्योंकि हमने शास्त्र में पढ़ा है कि कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते हैं, इसलिए उनको त्रिजुग कहते हैं। सत्य त्रेता और द्वापर में भगवान का अवतार होता है, कलयुग में अवतार नहीं होता है। यही जो वास्तव शास्त्र से बोल रहे हैं, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है, यही कले काले विष्णु अवतार नहीं, अतएव त्रिजुग करी कही विष्णु नाम, कलयुगे अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। तो कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है, ये शास्त्र ज्ञान है। सुनिया आचार्य कहे दुखी है या मने, शास्त्र करिए तुम करो अभिमान। तो फिर दुख प्रकट करते हुए गोपीनाथ आचार्य कहते हैं तुमको यही तो बहुत बड़ा रोग है, तुम अपने को शास्त्रज्ञ समझ रहे हो। अपने को शास्त्रज्ञ समझकर अभिमान कर रहे हो, यही बाहरी दोष दुख है। शास्त्र प्रमाण दे रहे हो, शास्त्र प्रमाण दे रहे हो, शास्त्रज्ञ करिए तुम करो अभिमान। भागवत भारत दुई शास्त्र प्रधान, सही दुई ग्रंथे
वाक्य न ही अवधान। देखो शास्त्र में भागवत और महाभारत यही दो मुख्य है शास्त्र, लेकिन इनको तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है। और जगह पढ़ लिया कि कलयुग में भगवान विष्णु अवतार नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन भागवत पढ़े हो, भागवत पढ़ करके जरा सही सही विचार करो और महाभारत पढ़ करके भगवान के अवतार के बाद, कृष्ण के अवतार के बाद गर्गाचार्य ने भगवान के बारे में कुछ कहा है, सुनो। भागवत भारत दुई शास्त्र प्रमाण सही दुई ग्रंथे वाक्य नहीं अवधान, सही दुई कहे कलित साक्षात अवतार, तुम्ही कह कलित नहीं विष्णु प्रचार। वे दोनों ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग में साक्षात भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान का अवतार नहीं। कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतः वह त्रिजुग करी कही तार नाम। कलयुग में वो लीला अवतार नहीं लेते हैं, इसीलिए उनको त्रिजुग कहा जाता है, बाकी वो छिप करके अवतार लेते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। प्रति युगे करण कृष्ण युग अवतार, तर्क निष्ठ हृदय तुम्हार नहीं का विचार। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक युग में भगवान युगावतार ग्रहण करते हैं, जैसा गर्गाचार्य ने कहा है, आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहतोम जुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णतांगत। पढ़ो भागवत, पढ़ो ठीक से। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, भागवत का ये श्लोक क्या कह रहा है, इस लड़के के, ये लड़का जो सांवला है आपका, नंद बाबा से गर्गाचार्य कहते हैं, ये जो सांवला बच्चा है ये प्रत्येक युग में शरीर प्रकट करता है और भिन्न भिन्न रंगों का है। शुक्लो रक्तस तथा पीत, ये सतयुग में शुक्ल वर्ण का रहता है और त्रेता में रक्त वर्ण का लाल, और कलयुग में पीत वर्ण का अवतार लेता है, और इदानीम द्वापर है कृष्णताम करता, इस समय सांवला रूप में जन्म लिया है। तो चार युग में जन्म होता है ना, शास्त्र कह रहा है ना। तब भट्टाचार्य ने कहा कि हाँ, तो कलयुग में भी भगवान का अवतार होता है। हाँ भाई होता है, तो शास्त्र कह रहा है ना, और तुम शास्त्रज्ञ बन रहे हो, अभिमान कर रहे हो। त्रेता सतयुग, त्रेता और कलयुग का वर्णन किया कि शुक्लो रक्तस्थ था पीत और इदानीम द्वापरे कृष्णताम गत, साफ शब्द है, साफ अर्थ है इसका। सो मतलब भगवान जन्म लेते हैं तो कलयुग में भी पीत वर्ण का जन्म होता है भगवान का, और देख रहे हो ना किस तरह सोने के समान पीले है चैतन्य महाप्रभु। हम सार्वभौम भट्टाचार्य को धीरे धीरे समझ में आ रही थी बात इस समझाने पर, कह त्रिजुग कर, त्रिजुग कर, अरे लीलावतार नहीं करते हैं इसलिए उनको त्रिजुग कहते हैं, जुगावतार करते हैं ना, प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करते हैं युग धर्म के प्रचार के लिए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकृतम प्राय जजंत ही सुमेध, सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यासकृत क्षमा संतो निष्ठा शांति परायण। तोमार आगे जत कथार एत कथार नाही प्रयोजन उसर भूमि ते जन बीजे रोपण, लेकिन सार्वभौम तुम्हारे सामने ये सब बात कहना बेकार है, इसी बंजर भूमि में उसर भूमि में बीज बोना बेकार है, इस प्रकार की फटकार कर रहे हैं। अब मैं इतना क्लियर शास्त्र प्रमाण दे रहा हूँ लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे, एकदम ऊसर भूमि हो, ऊसर भूमि जानते हैं ना, कहीं कहीं बीज डाला जाता है वो बीज तक बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं उगता है, फसल नहीं होती है। तो तुम एकदम ऊसर भूमि हो, बंजर भूमि हो, तुम नहीं समझोगे, मैं बेकार अपने टाइम बिता रहा हूँ तुमको शिक्षा दे। उसर भूमि ते जन बीजे पड़े तुम्हारा ऊपर तार कृपा जब हैबे ये सब सिद्धांत तबे तुम ही करीबे, जब तुम पर चैतन्य महाप्रभु की भगवान की कृपा होगी जगन्नाथ जी की तब ये सब समझ पाओगे। तुम्हारा जो शिष्य कहे कुतर्क नाना वाद यहाँ रखी दोष है माया प्रसाद, तुम्हारे शिष्य लोग ये तर्क कर रहे हैं, ये सब क्या कहा जाए, ये सब माया का प्रसाद है। माया इस तरह से तुम लोगों को बुद्धि दे रही है। जत शक्त हो बदताम बाजनाम वही विवाद संवाद भूव भवंती कुरवंत चैसा मुहूर्त मुह हम तस्मय नमो नंद गुणाय भूमि युक्तम च संति सर्वत्र भाषंते ब्राह्मणा यथा नायम 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 मदीया मुद्गृह्य बदतम किम दुर्घटन। भगवान की माया के प्रभाव से कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी गलत बोल सकता है, जैसा माया तुम लोगों से बुलवा रही है, तुम्हारे शिष्यों से तुमसे बुलवा रही है। साक्षात भगवान को अपने घर में देख करके, सारा लक्षण देख करके, और फिर भी तुम्हारी आँख फूटी हुई है, तुम चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को नहीं समझ रहे हो, उल्टे कह रहे इसके संन्यास की रक्षा करूँगा, वेदांत पढ़ाऊँगा, ये करूँगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुमको उपदेश देना मतलब बंजर भूमि में ऊसर में बीज डालने जैसा, और शिष्यों के सामने ही कह रहे हैं गोपीनाथ आचार्य। तबे भट्टाचार्य कहे जहा गोसाई स्थान है अमार नामे गण सहित कर निमंत्रण है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि अच्छा गोपीनाथ जी सुनिए, आप जाइए चैतन्य महाप्रभु के पास और हमारे घर पूरे अपने साथियों के साथ जितने भी वैष्णव हैं साथ में रहते हैं परिचित हैं सबको लेकर के वे आएंगे हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दीजिए। प्रसाद आनी तारे करा है आगे भिक्षा पश्चात हमारे आशी करा यह शिक्षा। पहले जा करके उनको लाइए निमंत्रण दे करके प्रसाद में खिलाना चाहता हूँ, बाद में हमको शिक्षा दीजिएगा। वास्तव में ऊसर भूमि जैसे उनको स्वीकार करना चाहिए था कि आप ठीक कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन उनका स्नेह ही उमड़ रहा था। चैतन्य महाप्रभु के वचनों ने ऐसा बांधा था सार्वभौम भट्टाचार्य, यही समझते थे कि ना इस बच्चे की रक्षा करनी है, करनी है। वो ईश्वर है इस बात पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, जाइए भिक्षा के लिए निमंत्रण दीजिए और खिलाने के बाद पश्चात हमारे ऐसी कराई शिक्षा, हमको जो भी उपदेश देना है चाहे दंड देना है गलत बोलने का बाद में आप कीजिएगा, पहले चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा के लिए लाइए। आचार्य भगिनी पति श्यालक भट्टाचार्य निंदा स्तुति हासे भिक्षा कराना चाहिए शिक्षा कराना चाहिए। आचार्य भगिनी पति सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन के पति थे और श्यालक भट्टाचार्य और भट्टाचार्य साले थे, तो निंदा स्तुति हास्य शिक्षा कराना चाहते, इसलिए गोपीनाथ आचार्य उनकी निंदा करके फटकार करके गाली दे करके भी उनको शिक्षा दे रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य दुख नहीं मानते थे, वो कहते तो अधिक पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, भागवत पढ़ो सावधानी से भागवत पढ़े अवधान के साथ भागवत पढ़ो, ये कहना बहुत बड़ी बात थी, ये सब श्लोक पढ़े हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अच्छा छोड़िए उनको निमंत्रण दीजिए घूम करके अपने साथियों के साथ हमारे घर आकर के प्रसाद लें, बाद में हमको आप दंड दीजिएगा या शिक्षा जो भी कर रहे हैं। तो अंततः उन्होंने ग्रहण नहीं किया। फिर चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने पर ही वो ग्रहण कर पाएंगे, गोपीनाथ आचार्य की बात को टाल देते थे। तो फिर हम लोग कल सुनेंगे कि किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हो गए और समझ गए कि ये साक्षात कृष्ण हैं, आए हैं जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो संसार का सबसे बड़ा विद्वान स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, कृष्ण सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे, माने हुए विद्वान। फिर काशी में प्रकाशानंद सरस्वती ने माना, रूप गोस्वामी पाद ने माना थे से पहले ही, अद्वैताचार्य ने माना। उस समय की दुनिया में जो भी श्रेष्ठ विद्वान थे सब एक स्वर से माने हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान।
ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत। कल हम लोग शेष भाग करें। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।
हरे कृष्णा।